मुझे दुआएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उसके बारे में भी हमें कुछ टूल चाहिए। तो इन सब बातों को एक एक करके हम लेते जाएंगे और आपके सजेशन के आधार पर हम ऐसा एक टूल बनाएंगे जिसके आधार पर मैं निश्चित कर सकूं कि मैं सचमुच में दुआ दे रहा हूं या नहीं, और दूसरा मुझे दुआएं मिल रही हैं या नहीं। ये मेरी अवस्था आज मुझे मालूम पड़े, उसके बाद में साल भर ये प्रोजेक्ट करेगा और साल भर के बाद में उसी टूल के ऊपर हम अगर चेक करें कि मैं कहां पहुंचा, वहीं का वहीं हूं, धीरे बढ़ा हूं, तीव्र गति का पुरुषार्थ करके रॉकेट की गति से ऊंचा गया हूं, किस प्रकार का मेरा ग्राफ है, ये सब हम अभी बैठ के बनाएंगे और उसमें आपका अब पूरा इन्वॉल्वमेंट दिल से, गीत भी है ना दिल से देते चलो दुआएं, तो दिल से इसमें जितना हम जाएंगे अंदर से खोद कर निकालेंगे वही फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां है और वहां भेज रहे हैं, ऐसा नहीं, सबके पास है और सब आपस में शेयर कर रहे हैं। संजय भाई को मैं ये माइक देता हूं, वे प्रश्न आपके सामने रखते जाएंगे, आप नोट भी करें और उनके जवाब अपनी बुद्धि से जैसा लगता है, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में जैसा है मुझे वही लिखना है। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। अभिनय भाई जी ने विस्तार पूर्वक बता ही दिया आप लोगों को, और नहीं ये बस रूहानी पालना वाला इधर
संख्या वहां बढ़ गई, रूहानी पालना वाले जो बैठे हैं वो प्लीज वो बाजू के हॉल में चले।
तो ये जो ग्रुप है, दुआएं देना, दुआएं लेना, दुआएं दो दुआएं लो, और जैसा कि कल क्लास में भी हमारी इंदिरा बहन जी ने स्पष्ट किया, विनय भाई जी ने भी काफी अच्छे ढंग से इसको बताया, तो हम इस चीज की क्लैरिटी में जाएंगे और हम जानते हैं कि दुआएं एक ऐसी चीज है जिससे हमारा मार्ग सरल हो जाता है, हमारे साधना का मार्ग बहुत सरल हो जाता है, हमारा जीवन सरल हो जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि समय समीपता की ओर है, जैसे संसार में परिवर्तन हो रहे हैं, यज्ञ में परिवर्तन हो रहे हैं, उनको देखते हुए यही लग रहा है कि अब ये समय बहुत हमारे पास नहीं रहा है, निकट भविष्य में इसका परिवर्तन होना निश्चित है। तो हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और बाबा हमेशा कहते हैं कि इसके लिए दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, तो इसलिए ये विषय इस बार चुना गया है और हमको पूरे वर्ष तक बहुत अच्छे से इस पर पुरुषार्थ करना है, रुचि से करना है। लौकिक प्रवृत्तियां तो हैं, रहेंगी, कभी कम नहीं होंगी, उसमें ही समय निकाल करके हमको बहुत अच्छा पुरुषार्थी बन करके अपने मार्ग अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये जो टॉपिक लिया है इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। पहला एक ज्ञानात्मक पक्ष इसका लिया है, क्योंकि जो विषय हम लेने जा रहे हैं उसका एक कॉग्निटिव पार्ट, वो विषय हमें स्पष्ट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विषय हमें स्पष्ट नहीं होता है तो भी हम उसके पुरुषार्थ की गहराई तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये विषय हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो उसको लक्ष्य में रखते हुए कुछ प्रश्न निकाले गए हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्शन पार्ट, एक्शन प्लान, इसका एक साधनात्मक पक्ष बनाया है, हम ऐसा क्या करें जिससे दुआएं देना और दुआएं लेना दोनों सहज हो जाए। दुआएं देना दुआएं लेना ये अपने आप में कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, पर दुआएं देने और लेने के लिए हम क्या करें जो ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, संस्कार बन जाए, सहज रूप से हमें लगे नहीं कि हमें दुआएं देनी पड़ रही हैं या दुआएं लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ रहा, पर एक वृत्ति हमारी ऐसी बन जाए, हमारा नेचुरल नेचर ऐसा बन जाए कि दुआएं हम दे भी दूसरों को और सहज रूप से हम दुआएं प्राप्त भी कर सके, जैसे हमारी दादियों की स्थिति है, ना चाहते भी उनके लिए हमारे मन से दुआएं निकलती हैं। तो एक इसका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा साधना, भाई साहब जी ने जैसा बताया विनय भाई ने कि आप प्रश्नों को लिखते जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप में सबके विचार सुनना संभव नहीं है, उसको नोट करना भी संभव नहीं है, तो कुछ कुछ बीच में आप बोल भी सकते हैं एक दो बातें, बाकी लिखते जाएंगे, बाद में चिंतन करके उसको पेपर आप नीचे ऑफिस से ले लेंगे। आपको चाहिए तो एक जने जाकर के और पेपर ले आए, अगर और चाहिए तो किसी को, और किसी को पेपर चाहिए क्या? अच्छा, तो एंजल के पापा कहाँ हैं? जरा नीचे से और पेपर ले आइए ऑफिस से, एक पूरा बंडल उठा लाइए, श्रीकांत भाई को बोलिएगा। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से सुने, लिखे, उस पर अगर कुछ अमूल्य विचार आपके हैं तो अभी सभी नहीं बोलेंगे, कोई कोई हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। और इसमें से कोई लिखने का, विनय भाई जी तो लिखेंगे ही, आप में से अच्छा फास्ट कौन लिख सकता है? हाँ, तो आप भी लिखते रहिए और उसका बाद में बहुत विस्तार पूर्वक आप अपने विचार लिख करके बाद में हमें या भाई साहब को दे करके जाएंगे। उस पर भी आप पेपर पे अपना नाम और मोबाइल नंबर आदि लिख देंगे। तो इसमें हमारा पहला जो एम है वो है दुआएं लेना और दुआएं देना। ये पहला प्रश्न है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया उसका एम है दुआएं लेना देना। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम दुआएं क्यों लेना और क्यों देना चाहते हैं? तो इस विषय पर तो ये दूसरा जो प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव, हम क्यों दुआएं लेना और देना चाहते हैं? क्योंकि जब तक हमें इसका संज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसके पुरुषार्थ में लगेंगे नहीं। तो क्यों हम दुआएं देना चाहते हैं, क्यों दुआएं लेना चाहते हैं दूसरों? सबसे पहले हम दुआएं लेना क्यों चाहते हैं दूसरों से? हाथ खड़ा करके बताएंगे। पुण्य का खाता जमा होता है, बीमारियां कम होती हैं। हाँ, एक एक बताएं, एक एक सबको मौका दें, बैठ जाए। बाबूजी बताएं, संकट के समय में जब कुछ भी काम नहीं आता है ना, कोई व्यक्ति, वस्तु, साधन, सगे संबंधी जब काम नहीं आते हैं ना, ऐसे समय में दुआएं काम आती हैं। और हमारा पुरुषार्थ, हमारा आत्म परिवर्तन इससे सहज हो जाता है ना। दुआओं में इतना बल है कि दुआओं के लिए कहा गया है कि दुआएं पत्थर को भी पानी कर सकती है। ये बाबा ने ही नहीं कहा है, लेकिन लौकिक दुनिया में भी ये बात मानी जाती है कि दुआओं में इतना बल है कि ये पत्थर को भी पानी कर सकता है। और पीछे बहन हाथ खड़ा किया था, हाँ, टू एक्सपीरियंस एवर हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, इससे हमारे जीवन में प्रसन्नता रहती है। बताएं, दुआएं हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा कवच का काम करती। हाँ बहन, आप दुआएं देना ही माना सब कुछ लेना। बहन, लिफ्ट का काम करता है हमारे लिए ना, सहज, हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है, हमारी प्राप्तियां सहज हो जाती है और सतो प्रधान बनते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा, हाँ आप बता दें जी, विक्रम विनाश होने में मदद। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें निकली कि क्यों हमें दुआएं लेनी है दूसरों से, क्योंकि इसके अनेक फायदे हैं। इससे हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है, हमारे लिए कवच का काम करता है, हम प्रसन्न रह सकते हैं, हमारी समस्याएं कम हो सकती हैं, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो, हमारी सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, हमारी फाइनेंशियल, दुआओं में कुल मिलाकर के बहुत बल है। तो आप लोग इसका जवाब एक पेपर पे लिखेंगे, पेपर अभी आ रहा है, अच्छे से लिख करके आप सबमिट करेंगे। एक भाई कोई खड़ा, भाई साहब बैठिए, एक भाई कोई खड़ा होके बांट दे पेपर, किसी को चाहिए हो तो, कोई भी एक जने खड़ा होके बांट दे जिसको भी। हाँ, थोड़ा थोड़ा सभी लाइन्स में दस दस आठ आठ दे दें, वो लोग आपस में ले लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि दुआ और शुभ भावना, इसके पहले मैं एक प्रश्न, क्योंकि किसी ने कहा था कि पुण्य बनता है, किसी ने कहा दुआओं से पुण्य मिलता है, आपने कहा था, मैं ये जानना चाहता हूं कि दुआ और पुण्य में क्या अंतर है? दुआ और पुण्य दोनों में कुछ फर्क है क्या? जी कौन बताएगा? थोड़ा दूसरों को भी मौका दें, कौन बताएगा? आप बताएं। एक मेटाफिजिकल है और एक जो है फिजिकल है. पुण्य फिजिकल हो सकता है एंड ब्लेसिंग इज मेटाफिजिकल. ओके, और कौन इसको बताएगा, दुआ और पुण्य में क्या अंतर है? जो दान धर्म हम करते हैं वो पुण्य है, दुआ क्या है? बहुत अच्छा बताया भाई साहब ने कि जो क्या आपने उल्टा साइड बोल दिया, दुआ कर्म है या पुण्य कर्म है? हाँ, मुझे लगता है कि शायद जो पुण्य है वो कर्म है और दुआ उसका फल है. जी, दुआ उसका फल. कोई भी पुण्य कर्म हम करते हैं तो उसके एवज में सामने वाले के दिल से क्या निकलती है? दुआ निकलती है. मैं थोड़ा इसीलिए कंफ्यूज हो गया था. और कौन बताएगा? हाँ, रिटर्न में मिलती है. अच्छा, हमारे पास दुआओं का बल होगा तो पुण्य भी हम कर पाए. ये भी बात ठीक है, पुण्य करने के लिए भी तो बल चाहिए ना हमें. और दोनों में संकल्प का महत्व है, दोनों में अच्छे शुद्ध सात्विक संकल्पों की आवश्यकता होती है. और पुण्य और दुआ में क्या फर्क है? दुआ शुभ संकल्प से होता है. ठीक है, भाई साहब ने जो उत्तर बताया था ना बहुत अच्छा है कि पुण्य है, एक कर्म है, एक श्रेष्ठ कर्म है, और दुआ उसका परिणाम है, उसका फल है. उसी तरह से एक प्रश्न और निकालना है कि दुआ और शुभ भावना में क्या अंतर है, क्योंकि हम लोग बैठे थे तो थोड़ा सा विचार विमर्श हो रहा था. तो दुआ और शुभ भावना में अलग अलग मत निकल रहे थे. आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि दुआ और शुभ भावना दोनों में कुछ अंतर है? भावना लगभग एक जैसी ही है. और किसी के मन में कोई इसकी सूक्ष्म परिभाषा है? प्रश्न तो लिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, सारे प्रश्न जरूर लिखते रहें, क्योंकि बाद में भी आपके मन में इसके विचार आ सकते हैं. आप आगे भी जाएंगे तो शायद सेंटर पर जब आप ग्रुप में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो वहां से भी कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है. बाद में भी आप कुछ प्रश्नों के उत्तर आप भेज सकते हैं. तो दुआ, हाँ बाबूजी पीछे हाथ उठा रहे हैं. दुआ एक फल है, शुभ भावना रखनी पड़ती है. ओके, उसका शुभ भावना के रिजल्ट में दुआ मिलती है. जी हाँ जी, उड़ जाएंगे. देखिए बाबूजी ने बाबा की कितनी अच्छी बात हमें बता दी, कितना उमंग दिलाने वाला है. स्वयं भगवान कह रहा है कि अंत में दुआएं ही काम आएंगी. धन काम नहीं आएगा, संबंधी नजदीक होंगे वो भी काम नहीं आएंगे, सारे साधन सुविधाएं व्यर्थ साबित हो जाएंगे. काम क्या आएगा? दुआएं. तो दुआएं और जी ओके, अब तो एग्री हो गए ना जी. हाँ, देने वाले हैं, लेना आपका संस्कार नहीं जी. अनकंडीशनल.
बाबा ने मुरली में यही कहा है कि दुआ पूज्य आत्माओं का निजी संस्कार है.
अच्छा,
तो जो मेरा निजी संस्कार है वो तो नेचुरल काम करना चाहिए.
को नहीं मिलती है. चलिए ठीक है, इस प्रश्न पर आप लोग और गहराई से विचार करेंगे. अगला प्रश्न है कि क्या हमें दुआएं देनी भी है या सिर्फ लेनी ही है? लेना ये तो हम सबका लक्ष्य है और अधिक से अधिक हम सबको दुआएं प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु क्या हमें दुआएं देनी भी हैं? हाँ, बाबा तो कहते हैं दुआएं देने में लेना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम दुआएं नहीं दे रहे हैं। कर्मों से भी तो दुआएं मिलती है ना, हमें बोल से भी दुआएं मिलती हैं, केवल दुआ दे करके नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उस पर हम चर्चा करेंगे।
लेकिन तो, यहाँ पर एक और बात है, जब हम कहते हैं कि दुआएं दो और दुआएं लो, लो का मतलब ये नहीं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला मुझे दे, बल्कि सामने वाला मेरे प्रति निगेटिव है फिर भी मैं उसको पॉजिटिव कर रही, मतलब मैंने अपने आप दुआएं ली है। ये दो एस्पेक्ट है इसमें।
हमारे मन में ये, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा,
एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दुआएं निकलने के लिए या लेने के लिए एक ही कंडीशन है, वो शुद्ध, जैसे दीदी ने क्लास में बहुत स्पष्ट कहा ना, वो शुद्ध होता है। तो एक्सपेक्ट करना मना वो अशुद्ध हो गया, वो दुआओं के आता ही नहीं है उसमें। मना कोई कहे आपने बहुत अच्छा किया, तो इतना सारा किया उन्होंने कहा ही नहीं, तो वो दुआएं में नहीं आएगा। तो बना निस्वार्थ करे, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
हाँ, मतलब इस प्रश्न को आप लोग बहुत सीधा मत समझिएगा, इतना सिंपल नहीं है। हमें दुआएं देनी भी है क्या? लेने के लिए तो हर कोई जागरूक रहता है, लेकिन देनी है तो क्यों देनी है? यदि हम देना चाहते हैं दुआओं को तो क्यों देना चाहते, उससे हमें क्या फायदा है? दुआ देने में भी बहुत फायदा है, जैसे कहा ना, दुआ देना ही दुआ लेना है, तो दुआ देने से भी बहुत फायदे होते हैं, इस पर भी आप विचार करेंगे। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? दुआ मिलेगी, ठीक है। हाँ बताएं जी। बिल्कुल, थ्योरी ऑफ गिव एंड टेक। मुझे लगता है कल आपने इंदिरा बहन जी का क्लास बहुत ध्यान से सुना है।
मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, कि क्या है हमारा लक्ष्य है, दुआएं लेना है, दुआएं देना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर दे, मैं ले रही हूँ या मैं दे रही हूँ, वो बात नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि मेरी स्थिति क्या है। जैसे उन्होंने कहा, वो स्थिति जिसमें आप बाबा को हमेशा देखो, बाबा में वो क्या है, वो सागर जैसे, वो अलग बात है, बट वो क्या है जो हर एक आत्मा को देख रहा है, और देखते क्या है जो हर आत्मा के प्रति बाबा को दुआएं निकल रहे, दुआएं माना ये अच्छा हो जाए, ये बात नहीं है, ताकत भी वो बाबा भर रहा है। सो इट इज लाइक बाबा हमेशा अपने स्मृति में हर आत्मा की वो श्रेष्ठ जो परंधाम की वो एलिवेटेड स्वरूप को ही बाबा इमर्ज करते हैं, और बाबा ज्ञान स्वरूप भी है जो जानते हरेक आत्मा का पार्ट और हरेक आत्मा की कैपेसिटी, हरेक को समझकर फिर भी बाबा उसे नहीं देखता, बाबा हर बच्चे को उस दृष्टि में देख रहा है। वही दुआएं है ना हमारे लिए, हम बाबा के वरदानों में पल रहे तो बाबा ऐसे नहीं बोल रहे, ठीक है बच्ची आप ऐसा हो जाओ, आप ऐसा हो जाओ, वो बात नहीं है, मैं दुआएं दे रहा हूँ, वो बात नहीं है। भगवान मुझे किस दृष्टि में देख रहे हैं, वही दुआएं हैं। सो दुआएं मना सटल फॉर्म इज व्हाट इज माय दृष्टि, मैं किस भाव से उस आत्मा को देख रही हूँ, वही दुआएं हैं। तो हमें उस ऑटोमेटिकली, बट वो दृष्टि भी उस तरह क्यों होते है, व्हाट स्मृति, जैसी स्मृति आपने कहा वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि वैसी कृति। सो व्हाट इज दैट स्मृति बाबा इज होल्डिंग, बाबा की बुद्धि में क्या वो स्मृति रख रहे हैं जिसके लिए उनकी दृष्टि में हर बच्चे इतने महान हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, जिसकी वृत्ति में ऑटोमेटिकली हर आत्मा के प्रति दुआ निकल रही है ना। तो हमें वो बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। और एक दो लाइन में बोलना चाहती हूँ, जो मुरली पढ़ रही थी तपस्या वर्ष का, जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें था सुख दो सुख लो, तो उसमें बाबा ने पूछा था कि पुण्य और दान में क्या फर्क है। दान कभी दिखावे के लिए भी किया जाता है, मैंने इतना दान दिया, इतना पैसा दिया और इसके लिए ये किया, तो पुण्य क्या हो जाता है, वो गुप्त होता है और गुप्त जमा होता है। और बच्चे क्या करते हैं, हमेशा स्लोगन आधा याद रखते हैं, दुख न देना है न लेना है, बट हमेशा ये सोचते हैं मुझे किसी को दुख नहीं देना है, बट दुख ले लेते हैं। बट कर्म फिलॉसफी बाबा ने इतना गहरा उसमें समझाया है, ऐसे नहीं सोचना है मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ बट दुख ले रहा हूँ ना, ये छोटी बात है, ये नहीं है। बाबा ने इतना कहा, जब मैं किसी का दुख ले लेता हूँ तो मुझ में क्या होता है, वो दुख की लहर क्या है, वो खिचड़ा है। सो मन में वो खिचड़ा जब हम डालते हैं तो उसमें कीटाणु पैदा होते हैं। कीटाणु क्या है, बाबा ने कहा विकारों का अंश है। तो जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि बैम्बू वो एक दो से टकराते हैं तो विकार का ज्वाला अग्नि ये होता है, संकल्प व्यर्थ व्यर्थ भी है तो विकार को जन्म देता है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा दुख लेना भी क्या होता है, विकारों का कीटाणु जन्म ले लेता है। तो यहाँ दुख लेना, सहन करना में क्या है कि बाबा की डेफिनेशन अलग है, हम ब्राह्मणों की डेफिनेशन अलग है, तो आप क्या सुनना चाहेंगे? क्योंकि बाबा के हिसाब से सहन करना मना बहुत, बाबा ने यहाँ तक उस शक्ति का वर्णन कर दिया है कि वो बाप समान स्थिति है, क्योंकि वो पत्थर फेंकते हैं तो आम देना का मतलब ये है कि अंदर से इतना भरपूर एंड फुल। जैसे ब्रह्मा बाबा को किसी ने निंदा किया, शिव बाबा को भी हमने कितनी निंदा कर दी, शिव बाबा इतना बड़ी हस्ती आकर बैठते हैं, हम उनके सामने झुटका खाते हैं, कोई टोली खाते रहते हैं, कोई भाव ऐसे पसार के बैठे हैं, भगवान बैठा है, इतना डिसरेस्पेक्ट। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई ऐसे मुड़ जाए या आपकी बात को सुने नहीं, आपको कैसे लगेगा? और भगवान आकर बोल रहे हैं, हम ऐसे यौन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे, इतना डिसरेस्पेक्ट, बट फिर भी हर एक के प्रति इतना प्यार, इतना श्रेष्ठ भावना, दैट इज ऑल्सो लाइक शुभ भावना, शुभ कामना से मतलब भरपूर फुलनेस, दैट इज बाबा इज टेलिंग सहन शक्ति, सहनशीलता, वेर इट्स लाइक कोई कुछ भी मेरी तरफ कैसा भी हो, इट्स ऑलवेज लाइक गिविंग।
ऐसा नहीं, उसको ये पता है मैं माँ बाप हूँ, ये मेरे बच्चे हैं और बच्चे सब कुछ करते हैं माँ बाप के आगे।
नॉट और
नो मीन्स हमको सहन करने की जो बात आती है, बाबा हमको कहता है तुम जगत माता हो।
हाँ,
वो जगत माता के समान में जब मैं आती हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे गलती करे तो मैं सिर्फ कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बताएंगे ठीक हो जाएगा, छोटा है ना, बोध है ना ये, तो वो जगत माता की बात अगर मन में रखते हैं तो हम बोलते हैं छोटा बच्चा लात मारता रहता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं लात नहीं मारा, साइकिल से रहा मेरा बच्चा। तो माँ का समान, तो अपने आप सहन शक्ति, वो सहन शक्ति नहीं माना, सहन शक्ति माना ही कि जो कुछ देख रहे उसमें भी मैं स्थिर, ये स्थिर है मेरा, ये डिस्टर्ब हुआ माना सहन शक्ति नहीं है, और ये स्थिर है माँ सहन शक्ति है, तो माँ स्थिर रहती है ना, और ही बोलती है कुछ नहीं हुआ ना, वो छोटा बच्चा है ना, उसको बस मैं बताऊंगी वो ठीक होता जाएगा, मेरा काम है उसको गाइड करते जाना।
ये भी हेल्प करता है कि वो स्वमान, बट कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम सोच लेते हमसे इतने सीनियर है, इतने बड़े हैं, क्या वो ऐसे कर सकते, छोटे हैं तो ठीक है हम सब बन सकते, कभी वो बात भी आ जाता है। तो इन सबसे परे सबसे ऊपर हमेशा, और एक ये मुरली कंप्लीट कर दूंगी और आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कैसे। तो इसमें बाबा ने कहा सुख दो सुख लो, कौन दे सकता है, जो कभी भी दुख न ले वही दूसरों को सुख दे सकते हैं, नहीं तो हम दे नहीं सकते हैं। तो उसमें बाबा ने, और उस मुरली हो तो डिटेल में बाद में आप पढ़ सकते, तपस्या वर्ष का है, तो उसमें सुख दो सुख लो का है। और दूसरा मुरली जब आप पूछ रहे थे कि कैसे वो है शुभ भावनाओं से भरा रहना है। और एक मुरली था बट वो डेट पता नहीं है मुझे, बाप समान संपन्न संपूर्ण स्थिति की निशानियां। बाप समान संपन्न संपूर्ण की निशानियां बाबा ने दो बातें बताए, एक है शुभ चिंतन, वो हमेशा शुभ चिंतन करते रहते हैं, दूसरा है शुभ चिंतक। चिंतक माना वेल विशर, हमेशा सबको इनको माना इट्स लाइक शुभ भावना और शुभ कामनाएं करना, शुभ चिंतक। सो बाबा ने उसमें कहा कौन शुभ चिंतन इज ऑलवेज आई थिंक अबाउट एंड विचार क्या है, चिंतन, विचार करना वो चिंतन है। शुभ चिंतक मीन्स गुड विशर, हाँ तो वर्ब हो गया। बट बाबा ने उसमें कहा है कौन शुभ चिंतक बन सकते हैं, जो पहले वाला जो शुभ चिंतन करते हैं। शुभ चिंतन माना जो ज्ञान एक खजाना है, बाबा ने कहा इतना है बच्चों के पास खजाना ज्ञान का, तो हमेशा उसका मनन करना और उसका ही विचारों में रहना तो आत्मा को इतना ताकत देता है। आई एम सो बिजी इन थिंकिंग ओनली अबाउट वही बात है कि मुझे चांस नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बहुत खुशी की कोई बात हुई, जैसे प्रमोशन मिल गया, कुछ लॉटरी लग गया 1 करोड़ का, आप इतने खुश है कि छोटे मोटे किसी ने कुछ कह भी दिया तो आप इतने नशे में हैं आपको सुनाई भी नहीं देगा और कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं किसी ने गलती कर लिया, बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट स्टेज ऑफ हाईनेस। ये छोटी छोटी बातें इन्फ्लुएंस नहीं करती, हम शुभ चिंतक बन सकते हैं। और दूसरी बात है ये कहाँ से निकलता है, दिल से निकलता है, भावना, संकल्प भी नेक्स्ट आता है बट उसे पहले भावना है। तो भावना कहाँ से निकलते, दिल से, तो दिल की शुद्धि चाहिए। जब दिल बहुत साफ सच्चा ऐसा रहता है तो ऑटोमेटिकली मुझे सबके प्रति ऐसी दुआएं निकलते हैं। तो दिल साफ शुद्ध करने के लिए बहुत सारी बाबा ने पॉइंट्स की है, आप सब उसके बारे में भी सोचिए। एक पॉइंट मैं बताती हूँ जो बाबा हमेशा साकार मुरली में कहते हैं, बाबा ब्रह्मा भोजन को बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से, बाबा की याद में श्रद्धा से खाएंगे तो दिल हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये बहुत बार बाबा ने कहा है। और जिसको भी आप इतने प्यार से बना के उन्हें खिलाएंगे उनका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये साकार मुरलियों का महावाक्य है। ऐसे आप चर्न करके और कुछ पॉइंट्स निकाल।
ओम शांति। शिल्पा मैम ने अच्छा क्लेरिफिकेशन दिया। अभी ये क्या, ये आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। थोड़ा सा जो टॉपिक है ये, इसकी चर्चा हम लोग बाद में भी कर लेंगे। तो ये हम अच्छा 11:30 आप लोगों का ब्रेक है तो 2-3 प्रश्न और रुक लिखवा दें, फिर 15 मिनट का ब्रेक चलेगा ना, ठीक है। तो आप हाँ नहीं चलेगा, पुरुषार्थ मिले थोड़ा, पुरुषार्थ के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो कोई हर्जा नहीं। आपको कौन सा प्रश्न पूछा था मैंने, दुआएं देनी भी है तो क्यों देनी है, क्यों हम देना चाहते हैं दुआएं, इस पर भी हम लोग सोचेंगे। एक और प्रश्न है कि दुआएं किस किस से लेनी है, दुआएं क्या हैं और किस किस से, सेकंड एंड फिफ्थ। हम दुआएं क्यों लेना चाहते हैं, हाँ अभी हम दुआएं क्यों देना चाहते हैं, ठीक है अभी है कि दुआएं हमें लेनी है तो किस किस से दुआएं लेनी है, इसकी भी क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। जनरली हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के प्रति हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो आस पड़ोस के लोगों के प्रति हमारी दृष्टि थोड़ी सी उनके लिए इन्फीरियर टाइप की, मतलब उनके लिए मतलब वो समझते हैं कि ये ब्राह्मण वाले अपने हैं और वो, हम ट्रेन में जा रहे हैं कोई बीके दिख गया ना फटाफट बिठा लेते हैं अपनी सीट पर, कोई बाहर वाला पूछता भी है भाई सब थोड़ा बैठ जाएं क्या, तो कहेंगे नहीं नहीं कोई आने वाला है, होता है ना ऐसा। तो हमारे मन में थोड़ा सा एक अलगाव का ये भाव होता है, थोड़ा सा एक भेद होता है। तो दुआएं हमें किस किस से लेनी है ये भी हमें स्पष्ट हो, ब्राह्मण परिवार से लेना है, हमें जिसके साथ रहते हैं घर परिवार में उनसे भी लेना है, भले वो ज्ञानी है या नहीं है, आस पड़ोस के लोग, क्योंकि पूरे संसार को स्वर्ग बनाना है ना, सबको बाबा का बच्चा बनाना है, और जाने अनजाने में कोई भगवान को जाने या न जाने वो भी तो हमारे ही है ना अपने, हाँ जो विरोधी हैं वो भी, उसकी भी बात आएगी। तो जो बाबा को नहीं पहचानते हैं वो भी अपने हैं, वो भी हमारे भाई हैं क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं, उनके प्रति भी हमारा दृष्टिकोण उतना ही शुद्ध और पवित्र हो, हमारे क्रियाकलाप उनके लिए भी वैसा ही हो जैसा अपने ब्राह्मण परिवार के लिए होता है। फिर हमें बाबा से भी तो दुआएं लेनी है ना, ईश्वरी परिवार से, लौकिक परिवार से, आस पड़ोस के लोगों से, जिस समाज में रहते हैं उस समाज से, और भगवान से भी तो दुआएं लेनी है। तो किस किस से दुआएं लेनी है इस पर हम जरूर चिंतन करेंगे। अगला एक और प्रश्न है कि जब हम पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे, प्लान बनेगा पुरुषार्थ करेंगे, एक वर्ष तक ये प्लान हमारा चलेगा पुरुषार्थ का, हम बीच बीच में ये चेक करेंगे कि दुआएं हमें मिली या नहीं, इसको हम जज कैसे करें, हमने कुछ दुआएं हमें मिली या नहीं इसको जज कैसे करें। एक दो भागों इसको दो तरह से जज करेंगे, इंस्टेंट कि हमने किसी के लिए कुछ किया, अच्छा किया, मदद की, अगर उसके दिल से दुआ निकली तो हमें कैसा फील हो रहा है, मानसिक लेवल पर हमें क्या अनुभव हो रहा है, और एक लॉन्ग टर्म में इस पुरुषार्थ के मार्ग पर जब हम चलेंगे तत्परता से पुरुषार्थ करेंगे तो बीच बीच में हम चेकिंग करेंगे, एक महीने के बाद जब दुआओं का स्टॉक हमारे जीवन में जमा होना शुरू हो गया तो क्या परिवर्तन आ रहा है, दो महीने के बाद हमारे जीवन में दुआओं के बल से क्या चेंज आ रहा है, छह महीने के बाद हमारे, हम मॉनिटरिंग करेंगे अपनी, अपने ऊपर एक ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि दुआओं का इफेक्ट हम पर क्या दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई हमारे लिए बुरा करता है, बुरा सोचता है, तो क्या तभी भी हम उसके लिए मन से दुआ दे सकते हैं, कोई हमारे लिए बुरा सोचता है या बुरा करता है और सबका सब सबके साथ अपना हिसाब किताब तो है ही है ना, तो बुरा व्यवहार करने वाले भी हमें मिल ही जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में है या लौकिक परिवार में है या हम समाज में भी, लोग ऐसे होते हैं जो न चाहते भी हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, शत्रुता रखते हैं। हाँ जी बस, हाँ यदि कोई हमारे लिए बुरा करता है या बुरा सोचता है तो क्या तब भी हम उसे दुआ दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो कैसे, ऐसा क्या सोचें, मन में ऐसा क्या परिवर्तन हम लाएं कि ऐसी अवस्था में भी हम उसे दुआ दे सकें। हाँ बोले, हाँ हाँ लिख सकते हैं, आएगा वो भी आगे आएगा, बताएं कर्मों की गुहे गति ड्रम होगा जी, पार्ट की नॉलेज सब, मतलब ड्रामा का ज्ञान, पार्ट का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान, ये इसमें बहुत हमें मदद करता है। ठीक है, तो हाँ बोले जी 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 तो ये कितनी अच्छी बात भाई ने बताई ना, बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो तो हमारे लिए संबल है ही है, बहुत अच्छी बात है। ड्रामा का ज्ञान, भाई ड्रामा में इसका पार्ट ही ऐसा है। कर्म गति का ज्ञान, मैंने भी कभी बुरा किया होगा इसलिए अभी ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं, इसे पीसफुली सेटल करिए। लेकिन भाई ने कितना अच्छी बात बताई कि वो एक छोटा बच्चा है ना, अबोध है, उसे पता नहीं है, अज्ञानी है, तो हम उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते है ना। तो एक ऐसे ऐसे विचार भी हम निकाल सकते है ना, जैसे ये विचार भाई ने दिया, ऐसे ही कुछ और अच्छे विचार हम निकाले कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आए तो ऐसा क्या विचार हम मन में रखें जिससे हम रिएक्ट ना करें। क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो 10 लोगों के बीच में लोग हमें देखते हैं, दूसरों को तो लाइसेंस प्राप्त है, वो गाली दे, झगड़ा करें, रिएक्ट करें, पर हमें ये लाइसेंस समाज ने दिया नहीं है। तुरंत लोग बोल देते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले गुस्सा करते हैं, इतना जोर से बोलते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे विचार हम लोग निकालें कि यदि किसी का व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं है तो भी हम के उसे क्षमा करो और क्षमा मांगे। तो इस पर भी आप लोग सोचेंगे
गहराई से, हम सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि श्रीकांत भाई खास अभी 2 बार कह के गए हैं करेक्ट टाइम में ब्रेक देना है, तो कोई अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी संजय भाई क्वेश्चंस बोलेंगे, आप लोग लिख लेंगे और उसके ऊपर सोच के अब ब्रेक के बाद 11:30 ब्रेक खत्म होता है।
दो प्रश्न और है, 2 मिनट लगे, हाँ बोल देते हैं। तो यदि कोई हमारे लिए बुरा करता, ये हो गया, किसी के संस्कार अच्छे नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत टफ नेचर होता है, कड़वा बोलने का या जिद का संस्कार होता है या तुरंत इरिटेट हो जाते हैं, भले हमारे साथ कोई अच्छा बुरा करे ना करे लेकिन किसी के इन जनरल व्यवहार अच्छा नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है, तो क्या ऐसी अवस्था में भी हम उन्हें दुआ दे सकते हैं? कैसे? और एक जिसकी चर्चा तो हो गई है, दुआ और पुण्य में अंतर क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। तो ये प्रश्न थे, वो चेक करेंगे आप इसमें। हाँ, ये भी एक अच्छा विषय, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि हम दूसरों को दुआ, ये भी आप लिख लीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न बाबू जी ने बताया, लिखे कि हम दूसरों को दुआएं जब देते हैं तो उन तक दुआएं वो पहुंच रही हैं या नहीं, ये कैसे चेक करें? जी बोलिए जी। तो वही प्रश्न आप लिखिए और आप चिंतन करके बताएंगे कि जो दुआ आप दे रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच रही है कि नहीं। अगर पहुंच रही है तो कैसे आपने मॉनिटर किया उसको? बिल्कुल, आपके प्रति या दृष्टि, वृत्ति, भावना, व्यवहार सब बदलता हुआ नजर आएगा। ऐसे और भी कुछ उत्तर हो तो वो भी आप लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हमारा कॉग्निटिव पार्ट था, जो हमारी समझ को बढ़ाता है, दुआओं के प्रति हमारी जो समझ उसको बढ़ाएगा। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो उसका डूइंग पार्ट क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हो गया, बस इतना ही। जी जी, इसके जी ये अभी आप हैं लिख करके दे दीजिए, कल आज दे दीजिए, कल दे दीजिए। अभी 2 मिनट बाबा को याद करके और हम लोग टी ब्रेक के लिए जाएंगे, फिर जल्दी वापस आएंगे। ओम शांति। सभी लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं, तो सब लोग पहुंचे इससे पहले जो प्रश्न दिए थे एक बार रिपीट कर दें उसको, एक बार रिपीट कर दें ताकि आप लोग उसको फिर से देख लें। हमारा ये जो पूरे वर्ष का एम है, हमने जैसे पहले बताया था कि अपने इस पूरे पुरुषार्थ को दो भागों में हमने बांटा है, एक ज्ञानात्मक पक्ष, एक इसका साधनात्मक पक्ष। ज्ञान हमें क्लैरिटी देगा, उसके बाद हम साधना की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो ज्ञानात्मक पक्ष में जो प्रश्न हमने दिए थे, पहला एम हमारा ये पूरे वर्ष के पुरुषार्थ का क्या है, जो प्रोजेक्ट हमने लिया है, दुआएं देना और दुआएं लेना, दुआएं दो दुआएं लो। और दूसरा प्रश्न था कि दुआएं क्या है, दुआएं क्या है। उसके बाद था शायद दुआ और पुण्य में अंतर कुछ था ना, नहीं नहीं दुआएं क्या है, इसके बाद एक था जी हाँ दुआ और शुभ भावना में अंतर क्या है, उसके बाद दुआ और पुण्य में अंतर क्या है। ये मैं क्योंकि मैंने नीचे लिखा था, ये आगे पीछे हो गया। तो दुआ और शुभ भावना में क्या अंतर है, दुआ और पुण्य में क्या अंतर है। उसके बाद था पांचवा कि क्या हमें दुआएं देनी भी है, यदि हाँ तो क्यों देनी है। नेक्स्ट था किस सुबह, वो शुरू में ऑब्जेक्टिव में दिया था ना,
क्या दुआएं लेनी है।
हाँ दुआएं एम के बाद ऑब्जेक्टिव जो था कि दुआएं हमें लेनी है, क्यों लेनी है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देनी भी है, हो गया वो। क्या थोड़ा उस समय जैसे प्रश्न मन विचार आया तो आगे पीछे थोड़ा हो गया है, किस किस से दुआएं लेनी है। जैसे चर्चा किया था कि लौकिक परिवार से, बाबा से, अपने ब्राह्मण फैमिली से, उसके बाद से क्या दुआएं मिली या नहीं कैसे जज करें, दुआएं मिली या नहीं कैसे जज करें। और इसी में जो किसी ने कहा था कि दुआएं हम देते हैं दूसरों को मिल रही है कि नहीं, ये भी कैसे जज करें, तो ये भी आपने लिखा होगा। हाँ दुआ, हाँ लास्ट में लिखा है, यदि कोई हमारे लिए बुरा सोचता है या बुरा करता है तो क्या ऐसी अवस्था में भी हम उसे दुआ दे सकते हैं, ये भी एक प्रश्न था। हाँ इसके लिए हम क्या करें, क्या सोचें जो हम दुआ दे सकें। नेक्स्ट था किसी के संस्कार अच्छे नहीं है तो क्या ऐसे व्यक्ति ऐसी आत्मा को भी हम दुआ दे सकते हैं, कैसे। ठीक है और कुछ था, बस इतना ही था ना। अब आगे इसका जो साधनात्मक पक्ष है, हाँ मैंने अभी बोला ना कि दूसरों को हम दुआएं देते हैं वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उसको हम कैसे चेक करें, उसकी निशानियां क्या होंगी, वो भी आपने लिख लिया है। थोड़ा सीक्वेंस पहले थोड़ा आगे पीछे हो गया है, वो तो कोई बात नहीं। अभी इसके लिए हम पुरुषार्थ क्या करें, एक्शन प्लान क्या बनाएं, इसका डूइंग पार्ट में है कि दुआएं प्राप्त करने के साधन। पहला प्रश्न है दुआएं प्राप्त करने के साधन, हम किस किस तरह से दुआएं ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम किन किन विधियों से हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका विचार चले, मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि बोल से हम दुआएं ले सकते हैं, मधुर बोल करके, किसी भी हालत में, परिस्थिति कैसे भी हो, हम कितना भी बिजी हो, कोई आए हमसे कुछ पूछता है या कोई हमसे थोड़ा रूडली भी कोई बात करता है पूछता है, हम रिएक्ट ना करें, मधुर बोलें। तो आखिर आदमी तो इंसान इंसान है ना, विवेक है, उसके पास पत्थर तो है नहीं, उसको फील तो होता ही है ना कि मैंने इस व्यक्ति को इतने कड़े शब्दों में बात किया और ये फिर भी कितना मीठा और मधुर भाषा में हमें जवाब दे रहे हैं। तो बोल के द्वारा हमें दुआएं मिलती हैं, कर्म, हाँ मनसा वाचा कर्मणा, बाप का आज्ञाकारी रह करके बाबा ने जो कुछ कहा है, जैसे किसी ने पूछा था जिसपे शिल्पा बहन ने बहुत अच्छा सहनशीलता पर एक्सप्लेनेशन दिया था, हमारी इंदिरा बहन जी ने भी बताया था। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें सहन करना है क्योंकि भाई ठीक है हमारा हिसाब किताब है, बोल दिया, पर इसका एक ये भी हो सकता है ना कि हमें सहन इसलिए करना है कि ये बाबा की आज्ञा है, बाबा ने हमें कहा, ये श्रीमत है, हम सहन किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सहन कर्म भोग के लिए नहीं कर रहे, मिटाने के लिए नहीं कर रहे, बाबा ने कहा है, ये बाबा की श्रीमत है, बाबा की आज्ञा है। तो जैसे कि एक आज्ञा पालन किया ना बाबा की, हर हाल में सहन किया, तो बाप की दुआएं तो मिलती है ना, भगवान के यज्ञ की हम रक्षा करते हैं, उसके फरमानों पर चलते हैं, बाबा ने जो दिनचर्या हमें बना करके दी है वो भी तो हमारे लिए एक श्रीमत है ना, उसको अगर हम बखूबी पालन करते हैं तो बाबा कहते हैं कि इसका भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। अमृत वेला हम उठते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, ये सब क्या है, भोजन की शुद्धि हम रखते हैं, विचारों की शुद्धि, तो ये बाबा ने जो दिनचर्या वगैरह दिया है, जो कुछ भी या जो भी नियम बनाए, ये सब श्रीमत है। तो नियम मर्यादाओं का पालन करना, इससे भी हमें दुआओं की प्राप्ति होती है। अगर हम सकास देते हैं, जैसे अभी भाई सब पूछ रहे थे कि प्रकृति को हम सकास दें, कैसे पता पड़ेगा कि हम प्रकृति तक हमारी सकास पहुंच रही है कि नहीं, तो हम सकास के द्वारा, जैसे एक चीज हम क्लियर करना चाहेंगे कि आज के संसार में डिप्रेशन और तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है और उसका सीधा सा प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता है। डिप्रेशन और तनाव का सबसे पहला अटैक किस पर आता है, हमारी नींद पर। किसी भी बात को लेकर के यदि हमारे मन में चिंता हो जाए तो हमारी नींद उड़ जाती है ना, शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन किसी का जीवन यदि प्रॉब्लम से सदैव घिरा रहता है तो संसार में आज तनाव और डिप्रेशन एक ऐसा रोग हो गया है जो लाइलाज हो गया और दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। लोग अनिद्रा की बीमारी से बहुत परेशान हैं और नींद एक ऐसी चीज है कि यदि व्यक्ति को चार दिन नींद ना आए, तीन दिन नींद लगातार ना आए, तो आदमी की क्या मानसिक अवस्था होती है, कितनी पीड़ा होती है, उसका वर्णन वही कर सकता है जो उसको अनुभव किया हो। मैं आपको अपना एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, 2 साल पहले मेरे को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन हो गया था, संभवतः मैं फॉरेन जाके आया था या क्या कुछ, मेरे को वायरस अटैक हो गया था। तो 15 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट था, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो लेटे लेटे मेरी यहाँ की पीठ की नसें फट गई 2-3 जगह की, और नसें इतनी बुरी तरह से वो फटी हुई थी कि बहुत सीवियर पेन मेरे को रहता था। मैं सिर्फ बैठ सकता था, लेट नहीं सकता था, और 1 हफ्ता तक मैं बैठे बैठे सोया, बैठा ही रहता था। बैठे बैठे किसी को कितनी नींद आ सकती है, मुझे नींद नहीं आती थी, दर्द इतना, पेन, मेडिसिन भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एक बार मेरे को बहुत रात को दर्द हुआ, मैं 3 बजे अमृत बेले डिस्पेंसरी में गया, जो उनके पास सबसे स्ट्रांग पेन किलर था उन्होंने दे दिया, हमारी चंद्रिका बहन जी ने, मुझे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा उस पर, पेन पर थोड़ा भी असर नहीं पड़ा, इतना ज्यादा पेन था। 1 हफ्ते करीब मैं सो नहीं पाया था, और 1 हफ्ते न सोने के बाद जो मेरी अवस्था हुई थी वो मैं समझ सकता हूं, उसको वर्ड से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जो लोग सो नहीं पा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी सजा है उनके लिए। तो हम सोने से पहले आधा घंटा कम से कम, हमारा ये पुरुषार्थ भी हो जाएगा और हमारी सेवा भी हो जाएगी, और हमारे लिए ये दुआओं का एक बहुत बड़ा कारण भी बन जाएगा कि सोने से पहले 15-20 मिनट नहीं तो कम से कम आधा घंटा पूरे संसार को अच्छी निद्रा का सकास दें, बाबा से शक्तियां लें और ये अनुभव करें कि मेरे भ्रिकुटी के बीच से पूरे संसार को ये किरणें जा रही हैं सुखद नींद की, और सब आत्माएं नींद चैन से लें, चैन से सो पाए। ठीक है, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं, उससे हमें क्या, लेकिन रहम की एक भावना हो हमारे अंदर, सब अच्छे से सो पाए। उसी तरह से जब हम सुबह अमृत वेले उठते हैं तो पूरे संसार में आज देखिए विकारों के कारण कितनी परेशानी है ना, आज 5 विकारों के कारण संसार में कितनी परेशानी है, कहीं पर हिंसा हो रहा है, कहीं पर लूटपाट हो रही है, घर टूट रहे हैं, संबंध बिछड़ रहे हैं, सब कुछ, बहुत सारी परेशानियां, पूरा संसार तहस नहस हो रहा है। सुबह जब हम उठते हैं तो अमृत वेले का 4 से 4:45 का समय तो हमारा अपना है, वो हमें किसी को नहीं देना है, वो सिर्फ बाबा से शक्तियां लेने के लिए हम यूज करें। पर उसके बाद कम से कम 15 मिनट नहीं तो आधा घंटा, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाएगा। योग के बाद बाबा से शक्तियां लेकर के पूरे संसार को दें, कभी सुख चाहे आप एक हफ्ते का प्लान बनाएं, रोज का अलग अलग ले ले, कभी सुख के वाइब्रेशंस पूरे संसार को दे, कभी शांति के वाइब्रेशंस दे, कभी सबके मनों में प्रेम की, निस्वार्थ प्रेम की भावना जागृत हो जाए, इसके सकास दे, कभी पवित्रता के सकास दे, कभी लोग निरोगी बनते जाएं इसका सकास दे, अलग अलग सकास रोज अमृत वेले आधा घंटा जरूर दें। दिन की दिनचर्या में तो फिर अव्यस्त हो जाएंगे, परंतु सुबह शाम का समय तो हमारे पास रहता ही है, तो ये दो समय सकास अगर हम देते हैं तो एक बहुत बड़ा दुआओं का स्टॉक हमारे लिए जमा कर देता है। और हमारा जो चीज हम देते हैं, ये एक नियम है ना गिव एंड टेक का, जो देते हैं रिटर्न में कई गुना मल्टीप्लाई होकर के वो हमें मिलता है। अगर हम नींद का बहुत अच्छा लोगों को सकास देते हैं, दान देते हैं, तो हमारी नींद गहरी हो जाएगी। अगर लोगों को हम पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का यदि सकास देते हैं, तो हमारे जीवन में ये सब दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। हाँ, मैंने कहा दुआएं, अगर आप सकास देते हैं तो दुआएं हमें मिलती है ना। संसार को अगर आपने दिया तो संसार से हमें दुआएं तो मिलेंगी ना, तो ये तो प्राप्त करने का साधन हो गया ना। तो इसीलिए प्राप्त करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, इस पर चर्चा कर आप लोग चिंतन करेंगे। सकास है, और सकास के बारे में हम एक चीज और बताएं कि सुबह शाम तो हम सकास दे ही, दिन में भी ध्यान रखें, जब भी याद हमें आए हम अनुभव करें कि मैं आत्मा भृकुटी के बीच में हूं और मुझसे किरणें निकल रही, वाइब्रेशंस। हाँ, कभी भी, और सुख शांति की, प्रेम की, आनंद की, जिसमें आपकी रुचि हो, या आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग जिस चीज की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं उसकी किरणें निरंतर निकल रही हैं। हाँ, जो भी, वो आप पे निर्भर करता है, आप जिस तरह से जो सकास देना चाहे, पर ये हमारी एक वृत्ति बन जाए, एक सरल नेचर हमारा बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। सुबह शाम तो हम बैठ के दे सकते हैं ना, दिन भर तो नहीं बैठ सकते, तो चलते फिरते जब भी याद आ जाए, दो बार याद आ जाए, चार बार याद आ जाए निरंतर मेरी भ्रिकुटी से, तो ये एक सोल कॉन्सियसनेस की एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी सेवा, दोनों चीज, योग और सेवा, दो साथ साथ हो जाएगा। तो सकास बोल के द्वारा, कर्म के अच्छे कर्मों से भी हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, हम वृत्ति अपनी दूसरों के लिए अच्छा रख के भी हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। सेवा अगर हम दिल से करते हैं, यज्ञ की सेवा चाहे दूसरों की सेवा, तो इससे भी हमें बहुत दुआएं मिलती हैं। सेवा करने के पीछे भी हमारा लक्ष्य अलग अलग हो सकता है ना, किसी को मान सम्मान की प्राप्ति लक्ष्य हो सकता है, किसी को स्थूल प्राप्ति लक्ष्य हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बच्चे यज्ञ की सेवा दिल से करते हैं उनके लिए दुआओं का दरवाजा, कहा है ना बाबा ने मुरलियों में, कई बार दुआओं का दरवाजा खुल जाता है। जो यज्ञ दिखावे के लिए नहीं, इनफैक्ट पुरुषार्थ और सेवा दोनों ही चीजें ये दिखावे का विषय नहीं है, ये गुप्त करने की चीजें होती। बाबा कहते हैं एक हाथ से दो तो दूसरे को भी पता ना पड़े, ये दान के लिए कहा जाता है। परंतु सेवा और पुरुषार्थ भी हमारा दिखावे के लिए ना हो, हम रुचि से करें, उमंग उत्साह से करें, तत्परता से करें, परंतु हमारे जो लक्ष्य हो दिखावा ना, लोग मुझे जान जाएं, लोग मुझे योगी समझें, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, नहीं। तो ये सब साधन बन सकते हैं दुआएं प्राप्त करने का, हेल्पिंग नेचर हमारा हो। ऐसी और भी अनेक बातें हो सकती हैं, आप और अच्छा निकाल सकते हैं, निकालेंगे। सेकंड प्रश्न है, उपरोक्त बातों को जीवन में धारण करने के लिए, जो भी चर्चाएं हुई हैं कि हमारा हेल्पफुल नेचर हो, सेवा दिल से करें, बोल अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, सुखदायी कर्म हो, हम श्रीमत पर चलते हो, ये बातें सुनने और चर्चा करने में तो अच्छी लगती हैं, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में इनको धारण करना इतना सहज नहीं है ना। हर कोई अच्छा बोलना चाहता है, लेकिन जब कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो हमारे बोल बिगड़ जाते हैं ना। हाँ, तो इसी तरह से ये जो बोल दूसरा प्रश्न कि ये जो भी उपरोक्त बातों की चर्चा हुई है उसे जीवन में धारण करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। केवल चिंतन करने से दुआएं नहीं मिलेंगी, ये जीवन में बातें नहीं आएंगी, तो क्या पुरुषार्थ करें। जैसे हम अपना योग बहुत अच्छा करें, योग से हमारे ये सब वर्च्यूज है ना जो भी चर्चा हुई, ये सब मूल्य हैं, हमारे जीवन के आदर्श हैं, मूल्य हैं। तो ये मूल्य ऐसे ही तो नहीं आएंगे ना, इसके लिए हम अच्छा योग करें, अच्छा चिंतन करें, ज्ञान की समझ को बढ़ाएं। मुरली सुनना और उसे समझना दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते हैं समझा बच्चे, पता है समझ नहीं रहे हैं, एक ही चीज को 20 साल से सुन रहे हैं, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, श्री बाबा भगवान है भगवान है, भाग्य विधाता है। हाँ बाबा ये भी कहता है कि तुम मुझे दिल से याद करो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं ही करता हूँ। पर क्या इतना निश्चय रहता है बाबा पे, हम सोचने लग जाते, छोटी सी बात आई चिंता हो जाती है। तो कहने का मतलब चर्चा करना अलग विषय है, उसे आचरण में ले आना ये टोटली अलग विषय है। तो ये उपरोक्त जो भी साधन है दुआएं प्राप्त करने का, उनको जीवन में लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, योग है, समझ को बढ़ाएं, चिंतन को बढ़ाएं, स्वमान रखें, और क्या क्या कर सकते हैं हम निकालेंगे। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, ये तो बाद में फाइनल हो जाएगा, इसके लिए चेकिंग के लिए हम एक चार्ट भी बनाएंगे, वो चार्ट आप लोगों को देंगे। आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहें कि उस चार्ट में हम क्या रख सकते हैं, हर महीने का चार्ट हो, 15 दिन का चार्ट हो, उस चार्ट में क्या क्या बातें शामिल की जानी चाहिए ताकि हमारा उमंग उत्साह बना रहे और एक साल तक हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा ले सकते हो, तो हम उसको भी सजेस्ट करेंगे। कुछ कहने दो,
हमें दो प्रकार का, हमने आज के दिन का जो निश्चय किया है सप्ताह का या महीने का पुरुषार्थ, वो किया कि नहीं किया, वो एक चेकिंग चार्ट जो पॉइंट बनाएंगे हम कि भाई मैंने सुबह अमृत वेला सकाश दिया हाँ या ना, ऐसा दैनिक चार्ट। और दूसरा वो चार्ट जिसमें मुझे आज मैं दुआ देने और लेने के मामले में कहां हूं और प्रोजेक्ट के अंत में मुझे कहां होना चाहिए, वो लक्ष्य रखा है उसमें क्या अंतर है। तो ऐसा दूसरा चार्ट वो बनेगा जो साल में यहां से जाने के बाद भरेंगे और प्रोजेक्ट पूरा होने के समय भरेंगे, उसी चार्ट को बनाना एक ही है। ये दैनिक चार्ट हमारी, हमने जो रूटीन निश्चित किया वो किया कि नहीं। और दूसरा जैसे हमने, मुझे डायबिटीज है मान लीजिए 6x है, एक महीना दवा ली 4x हुआ कि नहीं, ये चेक करते हैं ना वो लोग। तो वो x हमें निश्चित करना है कि आज मैं दुआ के मामले में किस x में हूं, और इतना पुरुषार्थ करने के बाद, इतना अटेंशन देने के बाद में वहां 6 महीने बाद 12 महीने बाद कितने x रहे या सब x मिट गए, अब दुआएं ही दुआएं निकल रही है, ये तो उसका एक चार्ट बनेगा। डायबिटीज चेक करने का एक ही साधन है क्या, कि ब्लड शुगर कितना है और उस समय ब्लड शुगर कितना है, ऐसा मुझमें दुआओं का लेने का और देने का मादा अभी कितना है और उसके बाद में उन्हीं पॉइंट्स पर कितना हो गया है, ये चेक करना। तो दो चार्ट बनेंगे, दैनिक चार्ट और दूसरा ये हमारे लिए मेजरमेंट बोलते हैं ना, मंथली भी नहीं, वो मंथली भी ले सकते हैं उसको, हर माह उसको प्रगति देखें तो एक महीने के बाद चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई प्रगति है, नहीं प्रगति है तो फिर उसका दूसरा कोई उपाय करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को इन बहन जी ने ही सिखाया था उस समय, बहुत पुराने समय में, PDCA वाला है? प्लान करो, फिर डू करो, फिर उसको चेक करो, और चेक में अगर कहीं कुछ कमी दिख रही है तो ऑल्टर करो या चेंज करो। तो PDCA का एटीट्यूड हर जगह पे लेते हैं लोग, तो हम भी इसमें लें कि भाई मैंने प्लान किया, मेरी दुआओं की अवस्था ये आज की है, लेकिन उसको मापने का क्या साधन, मुझे दुआएं मिल रही हैं उसका कोई मेजर होगा ना, तो वो बनाना पड़ेगा। ऐसे 10 प्रश्नों का या 10 स्टेटमेंट्स का हम बना सकते हैं और उसमें यस नो हमेशा, कभी कभी, ज्यादातर, कभी नहीं, ऐसे कुछ मेजर्स बनाएंगे। अब मुझे नींद बराबर नहीं आती, अब हाँ या ना में नहीं देंगे, ठीक है, मुझे नींद बराबर आती है कभी नहीं से लेके हमेशा, उसके बीच में आएगा तो इस तरीके से मैं दुआएं, उस मामले में मैं कहाँ हूं, अगर मुझे दुआएं मिल रही हैं तो मुझे सामने वाले का एटीट्यूड मेरे साथ कैसा होगा, है ना, तो उस एटीट्यूड के पॉइंट्स लिखने हैं मुझे। ठीक है, दो चार्ट बनेंगे। अपने आप को भी दे सकते हैं ना दुआएं, अपने आप को भी दुआ दे सकते हैं। हाँ, योग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक
है, सही बात है। पुण्य की कमी है ना, बट हर एक का अलग अलग टाइप होगा, सिर्फ नींद की बात नहीं है, कुछ और तो होगा।
चलिए, नींद की बात कही थी, बाबू जी कुछ कहना चाहते हैं?
हो गया,
नहीं ज्यादा आना, ओके, योग के टाइम ही आना या जब काम है तब ही आना, वो तो बहुत बड़ा बाबा ने डायरेक्ट लिखा है।
अच्छा, आपके, हाँ नहीं, पर हमेशा नींद नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी को सुन लेते हैं, फिर आपके प्रश्न का भी जवाब। आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए। तो आप तो सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप सेवा नहीं करते हैं? ये तो सबसे बड़ी सेवा है जो कोई नहीं करता, आपने कर दिया। बाबा डायरेक्ट भी देता है,
कोई सेवा रह गई है वो मैंने ही करनी है, और मैं ही करूंगा, मेरे बगैर कोई नहीं करेगा।
जी बिल्कुल, एक बार दादाजी के लिए ताली बजाएं सब लोग ना, जो कोई नहीं कर सकता उसको करना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हनुमान जी जैसा हो गया ना ये महावीर जी,
बता रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, सेवा हड़बड़ी में सब करके जो 90% कर देते, छोड़ देते,
छोड़ जाते।
तो दादाजी कह रहे हैं इम्पोर्टेंट बात है उसको फिनिश करना,
फिनिश करना, ठीक है।
वो दादाजी,
हाँ है, अभी तो है काफी। ओके, ठीक। तो अभी ये चार्ट वाली बात थी, भाई साहब ने चार्ट की कि डेली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे हमें चार्ट भरना है। चार्ट के लिए एक सीधा सा बात मैं आपको बता दूं कि वैसे तो स्पार्क ऑफिस की तरफ से आपको एक चार्ट, कॉमन चार्ट दिया जाएगा, लेकिन देखने में ये आता है कि कॉमन चार्ट सबके लिए एक जैसा एप्लीकेबल नहीं होता है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सबके पुरुषार्थ का लेवल अलग अलग है, सबकी दिनचर्या अलग है, सबका व्यवसाय अलग है, तो चार्ट भी अलग ही होना चाहिए। एक कॉमन चार्ट जरूर आपको मिलेगा, लेकिन आप अपनी स्व उन्नति के लिए अपना एक चार्ट बनाएं, डेली वाला भी और मंथली वाला भी, ऐसा मेरी राय है, आप जो भी उचित समझे वो करें। तो चार्ट की बात हो गई कि हमारे पास कोई ना कोई एक चेकिंग टूल हो। दूसरा, एक ऑब्जर्वेशन, ये एक इस तरह जैसे इसको एक्सपेरिमेंट जैसा मान लीजिए। बात तो ये निकली थी कि हम 10-15 का ग्रुप बनाएं और उस पर देखें कि जिनको दुआओं की ट्रेनिंग दी जाती है, समझ दी जाती है, उनके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, जिनको नहीं दिया गया, इन जनरल जो बाबा के बच्चे हैं उनमें क्या चेंज है। लेकिन ये बाद में लगा ये इतना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी राय एक ये है कि आप सब जहां से भी आए हैं, किसी सेंटर से 2 आए हैं, किसी से 4 आए हैं, किसी से 5 आए हैं, कहीं से एक भी कोई आया होगा, वहां जाकर के आप अपना एक और साथी तैयार कर लीजिएगा और आप एक दूसरे को देखते रहें। मंथली एक चेकिंग चार्ट बना ले, एक दूसरे को ऑब्जर्व करें कि जब से ये पुरुषार्थ हमने शुरू किया है तब से हमारे एक हमारे साथी में क्या परिवर्तन आया है, इसका क्रोध।
ओम शांति। अभी इस सेशन के शुरुआत से ही हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित हमने सारे कई सारे क्वेश्चंस नोट किए है ना, दुआएं क्या है, दुआ शुभ भावना में अंतर क्या है, ऐसे बहुत सारे जो भी प्रश्न लिखवाए हैं। अगर आपने मनसा सेवा और मनोबल वाली पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें मनसा सेवा क्या है, मनोबल क्या है, बाबा के ही शब्दों में उनके आंसर्स हैं। ऐसे ही आज जो अभी प्रश्न उठे हैं, उनके आंसर बाबा के शब्दों में क्या है, उसका ये एक रिपोर्ट है। फुल लव बाबास वर्शंस, बाबा के महावाक्यों से फुल है, जो आप लोगों के लिए जेरोक्स की जा रही है, आप उसको खरीदेंगे। हाँ, अभी इसको करवाएंगे इसीलिए बीच में रोका कि इसको इंट्रोड्यूस कर दे तो वहाँ हम प्रिंटिंग के लिए जेरोक्स के लिए भेज सके जल्दी। तो हाँ, इसका नाम तो विश्व सेवा दुआएं दो दुआएं लो,
प्रोजेक्ट चली थी
2008 का है ये। अब इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है सब कुछ। जैसे पहला चैप्टर है दुआएं दो और दुआएं लो, इसका अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, लेकिन किसके शब्दों में, बाबा के शब्दों में। यहाँ तो आप अपने अपने शब्दों में देने वाले हैं ना, लेकिन गाइड कौन करेगा हमको, बाबा करेंगे ना। तो बाबा के शब्दों में उसकी अर्थ क्या है, उसका व्याख्या क्या है। दूसरा अध्याय है दुआएं दो दुआएं लो, उसके प्रकार क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तीसरा अध्याय है साधन एवं पात्रता क्या है दुआएं देने और लेने के लिए। चौथा है विधि क्या है, उसमें सावधानी क्या बरतनी है, क्योंकि कई बार हम किसी के प्रति शुभ भावना अपने स्वार्थ के लिए भी रखते हैं, है ना। बाबा कई बार कहता है कि स्वार्थवश रहम कर रहे हैं आप, तो वो रहम नहीं है वास्तव में, है ना। तो विधि एवं सावधानी, और दुआएं दे रहे हैं और दुआएं ले रहे हैं उसकी लाभ क्या होंगे, हमको उसकी क्या निशानियां दिखाई देगी, उसकी विशेषताएं क्या है दुआएं देने की, वो सारा प्रथम उपखंड में ये दिया है। फिर द्वितीय उपखंड में, क्योंकि दुआएं दो की जो अर्थ और व्याख्या आएगी इसमें, उसमें बाबा के कई बार आएंगे, प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना, यही है दुआएं देना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, यही है दुआएं देना। तो फिर इसका डिटेल क्या है, अब मैं कैसे समझूं। हाँ, तो अब संतुष्ट रहना तो बोल दिया कि संतुष्ट अगर हम रह रहे हैं, हम संतुष्ट कर रहे हैं, माना हम दुआ दे रहे हैं, बट उस संतुष्टता की डेफिनेशन क्या है, उस प्रसन्नता की डेफिनेशन क्या है, वो भी बाबा के ही शब्दों में वो आपको इसमें मिलेगा, द्वितीय उपखंड में, कि जिसका एक है संतुष्टता और प्रसन्नता, उसका अर्थ है व्याख्या। संतुष्टता और प्रसन्नता धारणा के बीज तत्व एवं बाधक तत्व, कौन से तत्व ऐसे बाधक बन जाते हैं जिससे मेरी प्रसन्नता गायब बन जाती है, गायब हो जाती है। फिर संतुष्टता और प्रसन्नता के भी प्रकार क्या है, उसकी भी क्या आवश्यकता है, उसकी विधि क्या है, अभाव के कारण और निवारण क्या है, लाभ निशानी विशेषता, ये सब है। तो ये हो जाएगा खंड एक, जिसमें हमने प्रथम उपखंड और द्वितीय उपखंड ऐसे करके बनाया। फिर खंड दो में है बाबा नहीं, अभी जो हम बोल रहे हैं ना कि फलानी फलानी परिस्थिति आ जाती है, ऐसे समय में दुआएं, तो बाबा के ही शब्दों में बाबा ने हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों का जिक्र किया है और उसके लिए उपाय बताया है, रेमेडी दिया है कि कौन सी दवाई लेनी है उस समय। तो ऐसे 21 परिस्थितियां हैं, मैं एग्जांपल के लिए, कई बार शारीरिक बीमारी हो जाती है हमें, कोई लंबी यात्रा से भी आते हैं, सफर करते हैं, आसाम वाले आते हैं, तो उसमें भी हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं, अरे बाप रे इतना दूर से ऐसा वैसा, इससे तो अच्छा यहीं बैठ के देखो ना टीवी में, बाबा को क्यों जाना है वहां पे। हमारे संकल्पों की चेकिंग है एक्चुअली, दुआएं क्या है, हमारे अंदर से श्रेष्ठ संकल्प निकलना चाहिए। अब ये श्रेष्ठ संकल्प है, बीमारी हो गई मुझे, मेरे तो घुटने में, मेरा तो शरीर कभी साथ ही नहीं देता है मेरे को, अब ये संकल्प क्या है। आप बच्चे को भी रोज ऐसे ही बोलो, मम्मी आप तो मुझे ऐसे ही बोलती रहती हो ना, मैं ऐसे ही रहूंगा अभी। तो आपने जब ऐसा ही बोलते रहे इसको, तो इसको वाइब्रेशन क्या दिया आपने, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, तो आपके वाइब्रेशन क्या जा रहे हैं, तो आप खुद ही उसको ठीक होने में मदद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां अलग अलग, टोटल 21 है, मैं उसको पढ़ के बताती हूँ कि जब शारीरिक बीमारी आए कोई, जिस्मानी लंबी यात्रा व सफर के दौरान कोई कष्ट हो रहा हो, ऐसे समय में मन की चेकिंग ही वास्तव में दुआएं देना और दुआएं लेने की बात चल रही है। फिर दूसरा है विनाशी धन की गरीबी। कई बार हम अभाव में गुजरते हैं तो तब हमको क्या समझना है, कारोबार में रहते भविष्य की चिंताएं होती है, उस समय हम क्या करें, चिंता करें, ये भी तो शुभ संकल्प नहीं है, शुद्ध संकल्प नहीं है। फिर तीसरी है कोई बुराई से लड़ाई चलना, अंदर ही अंदर चलती है लड़ाई, मुझे पता है कि मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैंने अपने मन को समझा है गुस्सा नहीं करना है, फिर आ जाता है, फिर मैं अपने मन से बाद में बात करती हूँ, कितनी बार मैंने बोला है अपने आप को, मन तेरे को कितनी बार बोला है गुस्सा मत किया कर, फिर तू कर देता है, देखो बातें कैसे बिगड़ जाए, अंदर में चलती है ना बातें। तो कोई बुराई से लड़ाई चलना, कोई संस्कारों का केस अंदर ही अंदर चलता रहता है। चौथी परिस्थिति है अपनी कोई बात व गलती को अपने ही दिल में धारण करके रखना। पांचवी परिस्थिति है दूसरे की कोई गलती, कोई बुराई अथवा कोई कमजोरी को अपने दिल में धारण, एक है अपनी गलती को और एक है दूसरे की गलती को। फिर छठवा है कर्मेंद्रियों का दासत्व या जाल, हम उसके वश हो जाते हैं ना, कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म के वशीभूत हो जाते हैं कई बार हम। सातवीं है व्यर्थ व निगेटिव बोलने और जोर से बोलने की, दूसरे के व्यर्थ व निगेटिव को देखते सुनते उसे वायुमंडल में फैलाने की और व्यर्थ बातें सुन अपने दिल में व्यर्थ भर लेने की आदत, इससे कैसे मुक्त हुए हम। और फिर है कभी हम परेशान हो जाते हैं, कभी हम अपसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कभी हमको किसी से ईर्ष्या हो जाती है, फिर कभी हम क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, फिर हम शिक्षा देते हैं, कहते नहीं इसने गलत किया तो शिक्षा देना तो मेरा काम है ना, लेकिन हम शिक्षा किस ढंग से दे रहे हैं, शिक्षा उसको दे रहे हैं कि विनम्र रहना है और आप खुद विनम्र नहीं है, है ना, तो शिक्षा देना। फिर है सहन करना, मरना, झुकना, ये जो बातें आ रही हमने सुनी वो बाबा कह रहा है। फिर एक गाली, इंसल्ट, अपोजिशन, बद्दुआ, दुख व दुख देने वाले बोल आदि का वार जो हो रहा है, भी मैं नहीं कर रहा लेकिन फलाना रोज मुझे गाली देता रहता है, जब देखो तब मेरे को सबके सामने इंसल्ट करता रहता है, तो अंदर में कुछ चलता है ना, तो वो परिस्थिति आएगी जब आपके सामने, आपको क्या करना है। फिर कोई क्रोधी, विकारी, विरोधी, अपकारी और तंग करने वाली आत्माओं का वार हो रहा है आप पर, तब क्या करना है। संस्कार परिवर्तन में मुश्किलात आ रही है, तब क्या करना है। संगठन में चलने में मुश्किलात आ रही, कई बार बहनें इसीलिए नहीं रहती सेंटर पे, अकेले ही ठीक है, संगठन में बड़ा मुश्किल पड़ता है है ना, तो संगठन में सिर्फ बहनों की बात नहीं है, भाई भी, जैसे उन्होंने कहा
भाई
हाँ, तो संगठन में नहीं, सिर्फ यहाँ सेंटर की बात नहीं, आप परिवारों में भी देखो, परिवारों में भी आज टूट क्यों रहे, संगठन में नहीं रह पा रहे ना हम लोग। हाँ, तो संगठन में चलने में मुश्किलात आ रही, बाबा ने उसको डिस्क्राइब किया पूरा और फिर उसमें आपको कैसा रहना चाहिए। फिर है संस्कार मिलन, भाव स्वभाव मिलन से संबंधित परिस्थितियाँ, मैं कितना कोशिश करती हूँ इसके साथ संस्कार मिलाने की, हो रहा ही नहीं है। फिर है सेवा से संबंधित परिस्थिति, कोई कड़ा पेपर आ जाता है, अरे इसका तो कोई कड़ा पेपर था, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, इतना जबरदस्त किसी ने इसको चीट कर लिया, हम ऐसे बोलते ना कड़े पेपर है ये, तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ उसमें असफलता आ रही है बार बार, जैसे अभी आया कि चार्ट तो लिख लिया मैंने, लेकिन जब भरने का टाइम आता है मैंने कुछ किया ही नहीं, आज क्या भरूं, फिर कल, अच्छा कल कर लूंगा, फिर कल, फिर परसों, फिर हो गया, निकल गया साल, निकल गया, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था मैंने तो पुरुषार्थ में असफलता, और लास्ट में कोई प्रतिज्ञा करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो बाबा ने खुद ही, हम बच्चों के जीवन में कैसे परिस्थितियां आती है और उनका सलूशन जो बाबा कह रहे हैं दुआएं दो और दुआएं लो, उसकी मीनिंग क्या है, वो प्रैक्टिकल में बाबा खुद ही बता रहे हैं। तो इसलिए ये बुक जो है अभी वो जा रही है जेरोक्स के लिए, क्योंकि वो खुद अपने आप में, मैं समझती हूँ 100-150 पेज की है, तो नहीं बात वो नहीं है कि उसको जेरोक्स होने में भी टाइम लगेगा बात वो है
सॉफ्ट कॉपी होती तो प्रिंट अच्छा निकलता,
सॉफ्ट कॉपी है मेरे को दिया हुआ है इनको,
आई
हैव गिवन,
कल तक भी है।
ठीक है, नहीं तो बोल देते उनको। कुछ बोलना,
इसका कागज में छप के मिलने में थोड़ा समय लगना है, एक साथ उसको बाइंड भी करना है और यहाँ तक लाना है, यहाँ नहीं होना है। वो भाई इसलिए जल्दी कर रहा था कि मैं पहुंचूं तो शुरू हो। अब इसकी कीमत लगभग 150 रुपया पड़ेगी, जितनों को लेना है हाथ फ्री रहा। ओके फाइन, उन्होंने तो 150 कॉपी ऑर्डर कर ही दिए, हम लगभग एक... हाँ श्रीकांत भाई, नहीं अलग पन्ने बहन जी, 125 पन्ने हैं, अलग अलग नहीं है। वो बाइंडिंग तो चाहिए,
वो कर लेंगे,
वो कर लेंगे, कल शाम तक मिल जाए तो अच्छा है।
हो जाएगा, हो जाएगा,
हो जाएगा, चलो ठीक है। एक हाथ की ताली श्रीकांत भाई के लिए।
शाम को कितने भाई बहन जाने वाले हैं? अगले बार आपको छुट्टी नहीं मिलेगी आने के लिए, ठीक है? पूरा 4 दिन रमेश भाई कहते थे ना, पहले आओ मीटिंग पूरा करके जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे मजाक से बोल दिया। ठीक है,
श्रीकांत भाई को आपके लिए इतने जल्दी जल्दी सब तैयार कर रहे हैं ना।
अच्छा, मुझे इस ग्रुप के लिए एक बात कहना था, ये जो प्रोजेक्ट हमने लिया है उसके निमित्त रमेश भाई बने हैं। नहीं कोई बात ना, बैठो बैठो। तो ये ग्रुप आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो तो प्रोजेक्ट की बात है, लेकिन जो हेडक्वार्टर को आपसे अपेक्षा है वो है कि ये ग्रुप विशेष योगी ग्रुप बने। और यहाँ पे जो भी भाई बहन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबके पास जब भी कोई सिचुएशन हो, चाहे यज्ञ के लेवल पर हो, सेंटर लेवल पर हो, बड़ों की स्वास्थ्य से संबंधित हो, आपको मैसेज जाएगा, आप कलेक्टिव मेडिटेशन करना इसके बारे में। ये हो सकता है आप पूरे साल भर में कहीं भी रहोगे, ठीक है? अब बाकी प्रोजेक्ट पर चर्चा होगा, ठीक है? दुआ सबसे बड़ा लिफ्ट है पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए, तो आपकी एक एक का एक ही कंट्रीब्यूशन चाहिए, योग का सहयोग और दुआ, वह सब आपको मिलेगा अगर हमारे पास प्रॉपर डाटाबेस हो, ईमेल और मोबाइल नंबर। आप अगर मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हेडक्वार्टर की तरफ से कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। ये यज्ञ में नियम नहीं है कि ऐसे ग्रुप बने, सभी अपना अपना बनाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हेडक्वार्टर से आपको सारे मैसेजेस जाएंगे ईमेल के द्वारा। ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, जिसकी ईमेल नहीं है आप ईमेल जरूर ओपन करिए। अरे आप सोचिए कि पूरे ब्रह्मा कुमारी जी में अगर आप सच में बाबा के नियम मर्यादा को धारण करते हुए अपने आप को बनाएंगे और योग का सहयोग देंगे, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ सभी तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन योग का सहयोग कोई नहीं देता है, ये हमारा अपना अनुभव 2 महीने हमने देखा है, ठीक है? तो इसके लिए तैयारी भी करनी होती है, तो आपको सब गाइडलाइंस मिलेगी इधर से, ठीक है? अभी आप अपने मन को शांत कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। वो हमारे काम है, क्योंकि हमने आपने हाँ कर दिया, अभी आप सबको एंगेज करना हमारा काम
रहेगा। जब श्रीकांत भाई एक बात बोल रहे थे तो एक बात याद आई, बनारसी भाई आए थे बैंगलोर में जस्ट 1 वीक पहले, तो वो वही बात बता रहे थे। अब हमारा मेन रोल क्या है कि सब कुछ स्टेजेस में जाते हैं, यज्ञ में भी बहुत सारे नए आ रहे हैं, बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है, बट ये क्या क्यों इसमें जाना हमारा काम नहीं है, वो कैसे फंसते हैं आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है बाबा? आज की मुरली में भी कहा ना, बड़े बड़े महारथियां भी चले जाते हैं, तो इट्स लाइक पार ड्रामा में किसका क्या है क्वेश्चन करना हमारा काम नहीं है, तो हमें क्या करना है, क्या करना है क्या करना है? उन्होंने एक ही कहा, कोई गलतियां कर रहा है कि आजकल का टाइम ऐसा है, हम खुद अपने आप को देखें कि हम गलती करें तो भी कोई गाइडेंस दे, तो क्या हम रिसीव करने की ताकत रखते हैं? नहीं रखते।
कोई आत्मा में उसको रिसीव करने की ताकत ही चले गए तो हम क्यों किसी को गाइडेंस दे या शिक्षा दे। तो क्या हमारा एक ही फर्ज बनता है? उन्होंने कहा कि कोई गलती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम ऐसे सोचे हमारी फैमिली है ये, हम सब फैमिली है ना बाबा का, तो गलती हो रहा है तो बाबा को कहना है बाबा ये आत्मा को थोड़ा ताकत देना है, कौन सी वीकनेस है उसको भरने के लिए वो बाबा से रिक्वेस्ट करना है। हमारी फैमिली है, ये सब ऊपर नीचे हो रहा है, कोई और ये कहे देखो ये ब्रह्मा कुमारी से ऐसे, आज पूरा बाबा ने क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं है कि सदगुरु की निंदा करना मना, जाकर शादी कर ले वो निंदक है, वो धारणा गलत है। क्रोध किया, किसी ने कहा देखो ये ब्रह्म कुमारी बोलते हैं शांति शांति, इनमें इतना गुस्सा है, तो सदगुरु का निंदक हो गया, वो सबसे बड़ा पाप हुआ ना। और हम सोचते हैं हम कुछ तो बड़े पाप नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो गुस्सा आज तक अंश मात्र तो हम सब में है, कोई है जिसमें गुस्सा का अंश भी नहीं है? है तो हमें इनके ऊपर वर्क करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई कह रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है तो इतना हमें ये होना चाहिए बाबा हाँ हमारी फैमिली का ये है और बाबा इन्हें ताकत भरे और हम भी उन्हें दुआएं दे ताकि उस वीकनेस से बाहर आए। बाबा उसका बहुत क्लैरिफिकेशन भी देते हैं, जैसे आप सोचो बहुत आपका बहुत गहरे दोस्त है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बनता है, और सडनली कोई सच में कोई भूत उसमें प्रवेश कर देता है, स्पिरिट भूत, और वो बहुत उनसे आपको गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपका भावना क्या निकलता है उसके प्रति, क्या निकलता है, क्या निकलता है भावना? आपको सच में ये लगता है इतना अच्छी आत्मा, देखो ये आ गया और बिचारी इतना तंग कर रही है, इसको इससे मुक्ति मिले, रहम आता है और सच में प्यार भी आता है और दया भी आता है, बट उनके प्रति ना घृणा आती है, कितने सालों से ऐसे कर रहे हैं, ना घृणा आता है, ना क्रोध आता है, कुछ आता है, बट ये रियलिटी है हम सब में कि रावण वो भूत नहीं है, बट रावण नाम का भूत जो है बाबा कहते इतना उसका प्रभाव इतना जोर है। आप ओरिजिनली हर एक आत्मा इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, इतना भरपूर, इतना श्रेष्ठ है ना, हम सब है ना। क्या हुआ है हम थोड़ा वीक हो गए तो वो पांच विकार में हमारा जितना ज्यादा किस में वीकनेस है उसमें प्रवेश था। भूत भी ऐसा करता है ना, जो वीक है उसको पकड़ता है, जो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है ना शरीर में नहीं आत्मा में स्ट्रांग है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे हमारे अंदर भी क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, कोई भी क्यों आता है वो ट्रेस हमारे अंदर थोड़ा रहता है, हम वीक रहते तो वो आ गया, तो किसी ने कुछ ये हो दिया उस पर रहम करना चाहिए या ये ऐसा है टाइटल देना है? रहम करना है ना, तो वही दुआ है कि आप जिसको भी देखो कि हम सब परवश है, कहीं ना कहीं हम सब में कोई ना कोई वीकनेस है, नहीं तो हम शरीर छोड़ चुके होंगे, है ना। बाबा कहते कर्मातीत हो गए तो कोई भी रह नहीं सकता शरीर में, शरीर के अंदर है तो अभी भी ट्रेसेस है, तो क्यों हम दूसरों को देखें? उसको भी दुआ देंगे तो मेरा भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो एटलीस्ट अपने स्वार्थ के लिए तो सही दुआ दे दो, है ना। तो यही हमारा एक ही काम है कि हमें कब आएगा दुआ, क्या आएगा, लॉजिक वो सब नेक्स्ट बात है, बट सच में वो समझे कि हम सभी परवश है, और जब तक हम एक दूसरे के प्रति वो भावना नहीं रखेंगे कि हम सब परवश है, बट हमारी ब्राह्मणों की दुआ से ही हम सब अपलिफ्ट होंगे। मैं अकेली अपलिफ्ट हो ही नहीं सकती, आप सब कैसे भी हो, आप सब में विकार है, मैं आपसे बहुत अच्छी हूं और ऊपर चली जाऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने भी कहा है जो लास्ट का विनाश का हो या कोई भी कार्य हो, सभी ब्राह्मणों में एक साथ एक ही संकल्प हो तभी हो सकता है। तो हम सब मिलकर एक दूसरे को सिर्फ वही सहयोग चाहिए, वही हमारा कर्तव्य है, उसी में हमारा सेफ्टी है और वही हमारे लिए भी चाहिए, है ना। तो एक ही सोचे सब परवश है कभी ना कहीं, तना है ना, जिम्मेदारी भी है,
आवश्यकता भी है, तो ये सोच के, क्योंकि पुण्यात्मा जब वो क्वेश्चंस बोल रहे थे तो उस मुरली में पुण्यात्मा का एक ही लाइन में बोल के खत्म करना चाहूंगी कि पुण्यात्मा और दान में जब फर्क बाबा बोल रहे थे तो हमें सुख देने के लिए दुख नहीं लेना है, वो एक बात थी। और सच में हमने दुख नहीं लिया है तो उसका इंडिकेटर क्या है? अगर हम पुण्यात्मा है तो उस मुरली में बाबा ने कहा वो भरपूरता अनुभव करेगी, इतना फुल तृप्त होगी आत्मा कि उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा कि कोई हमारी तारीफ करे, कुछ भी करे, और उसका इंडिकेशन कि मैं भरपूर हूं उसको कभी व्यर्थ नहीं आएगा। माना मैंने एक काम किया तो किसी ने तारीफ करे ना करे या वो ठीक हुआ ना हुआ, संकल्प चल रहा है तो यथार्थ नहीं है और पुण्य नहीं है, वो जमा नहीं हुआ है, वो इंडिकेशन बाबा ने दिया।
ओम शांति। अच्छा लग रहा है ना, साथ साथ विषय की भी क्लैरिटी होती जा रही ना, अच्छे अच्छे जैसे जैसे विचार आ रहे भाई बहनों के द्वारा उसकी स्पष्टता आपको मिलती जा रही है, तो बहुत अच्छी बात कि दूसरों को हमसे कोई कष्ट ना हो, ये भी एक है ना, जैसे बहन जी ने दिया उदाहरण कि क्रोध करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ब्रह्म कुमारी वाले होके क्रोध करते हैं क्या। अभी एक भाई साहब कह रहे थे ट्रेन में जब हम आते हैं सुबह सुबह 3 बजे उठ के ही खिटपिट शुरू कर देते हैं बेचारे, दूसरे लोग तो देर तक सोने वाले उनकी नींद खराब हो जाती है। वास्तव में ये भी ठीक नहीं है ना, ये भी एक जैसे बद्दुआ लेने का साधन बन जाता है। फिर बहन जी ने कहा भी ये फैमिली है, फैमिली के लिए हम बहुत अच्छी भावना शुभ भावना रखे, जैसे कि वो भूत प्रवेश कर गया है उसका दोष नहीं है, दोष किसका है अंदर जो भूत घुसा हुआ है। तो एक पर कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, पर ये सब चीजें इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेंगी। केवल सुन लेने से बहुत अच्छे और सुंदर शब्दों में बहन जी ने हमें बता तो दिया, पर क्या सुन लेने से ये धारण हो जाएगा? जब भगवान की मुरली 20 साल से 15 साल से 10 साल से सुन करके हमारा आत्म परिवर्तन नहीं हुआ तो एक बार सुनने से होगा, दो बार सुनने से होगा, नहीं होगा ना। इसके लिए एक ग्रुप बना हुआ है पुरुषार्थ का, हम सबको इसके लिए बहुत अच्छा मेहनत करना है और करके, और एक लगन रुचि, जैसे मैं अक्सर अपने आप को एक बात याद दिलाता हूं कि मैं इस मार्ग में क्यों आया, मैं जब ज्ञान में आया तो क्यों आया, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी क्या? आप सब अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि जब आप बाबा का बने किसी ने आपको पकड़ के लाके सेंटर में डाल दिया क्या? आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, आपको बाबा का बनना ही पड़ेगा, आपको राजयोगी जीवन जीना ही, अपनी इच्छा से आए ना, अपनी खुशी से आए, अपने उमंग से ये जीवन हमने धारण किया है, जीवन को एडॉप्ट किया है, तो जब पुरुषार्थ करने की बारी आती है तब हम पीछे क्यों हट जाते हैं? जब इस जीवन को हमने अपनी रुचि और खुशी से अपनाया है तो पुरुषार्थ के लिए फिर हम ढीले क्यों हो जाते हैं? बिजनेस से समय नहीं मिल रहा है, गृहस्थी से समय नहीं मिल रहा है, हमारी सिचुएशंस ये हैं, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हमारे कंडीशंस अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल यहाँ एक परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारे मन में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, अंदर में एक रुचि डेवलप करने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं ना मोहब्बत होती है तो मेहनत वहां पर कम हो जाती है, मेहनत महसूस नहीं होता। एक माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है उसके लिए इतना कुछ करती है, कभी बखान करती है क्या मैंने तेरे लिए इतना किया, और गुस्से में बोल देते हैं वो अलग बात है, रात को जगना पड़े तो भी उसे मेहनत नहीं लगता। तो हमारे मन में भी पुरुषार्थ के प्रति रुचि हो, अंदर से उस रुचि के रुचि को डेवलप करने के लिए हम पुरुषार्थ करें मेहनत, कैसे वो रुचि डेवलप हो? तो एक अच्छा पुरुषार्थ हमें पूरे वर्ष तक करना है। आपको हम लिखवा रहे थे ऑब्जर्वेशन कि जहां से भी आप आए हैं 2-3 लोगों का अगर ग्रुप है तो आप एक दूसरे को देखें, हो सके तो उन्हें बता भी दें कि हम लोग आपस में बैठकर एक बना लें आप मीटिंग करके कि हम एक दूसरे को देखेंगे, और एंड ऑफ द मंथ हम हर महीने का एक छोटा सा वो देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या परिवर्तन आया है, ताकि हमारे लिए भी एक डेटा हो दूसरों को सुनाने के लिए बताने के लिए, और हमें भी लगे कि हाँ इस पुरुषार्थ से कितना चेंज आ रहा है हमारे अंदर। और हो सके यहाँ पर ज्ञान सरोवर में एक बार एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, निवासियों के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। एक हॉल में सभी निवासियों के नाम से एक बैग रख दिया गया था और वहां पर जी हाँ आगे और भी करें आप, वो तो बाहर वालों के लिए था लेकिन ये अपने परिवार के लोगों में अपने ग्रुप में क्या एक दूसरे में परिवर्तन है देख करके भी तो परिवर्तन। हाँ एक दूसरे पे भी अटेंशन रहता है तो हमें लगता है ना हमारे पर अटेंशन है, हमें ठीक चलना है। दुआएं लेनी देनी तो हमें सबको है लेकिन आप चार लोग मिलकर के अगर इस पार्क की तरफ से प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है ना कितनी रुचि और कितनी तत्परता से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चेंज आ रहा है। हमें दुआ लेनी है, हमें बोल को सॉफ्ट करना पड़ेगा, व्यवहार को नरम करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को चेंज करनी पड़ेगी, सेवा दिल से करनी पड़ेगी। ये सब परिवर्तन है ना, जो छोटे छोटे परिवर्तन हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे। तो क्या ये परिवर्तन आ रहा है या जैसे कि कहा कि एट द एंड ऑफ ईयर पता पड़ा अरे हमने प्रोजेक्ट तो लिया था अब याद आ रहा है साल निकल गया बीच में, ऐसा नहीं। तो हम थोड़ा सा ये बीच में ऑब्जर्वेशन रखे। मैं ज्ञान सरोवर की बात बता रहा था कि ज्ञान सरोवर में एक बार तीन चार दिन का बीच में एक हफ्ते का खाली समय था तो सबके नाम से एक हॉल में एक बैग रख दिया गया और एक कार्ड कुछ ढेर सारी कार्ड्स रख दिए गए थे और सबको कहा गया था कि हर व्यक्ति सबके लिए एक एक सबका एक एक गुण लिख करके हर बैग में डालना है। जैसे मैं हूं और मेरे साथ 150 ज्ञान सरोवर निवासी हैं तो सबके बारे में एक एक गुण उसका देख करके लिख करके उसके बॉक्स में डालना है, उसके बैग में डालना है। तो ऐसे 150 लोगों के बारे में हमें कुछ न कुछ पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव गुण उसका लिख करके डालना है। तो इससे क्या होता है कि जब हम उसको देखते हैं, उसका गुण देखते हैं और उससे बताते हैं तो आपस का हमारा प्रेम भी बढ़ता है। और एक साइकोलॉजी है ना कि अगर किसी ने हमें प्रेज किया, हमारे गुण का हमें दर्शन कराया तो हमें ये ध्यान रहता है कि भाई इस व्यक्ति ने हमारा गुण देखा है तो कभी भी इसके विपरीत कर्म हमसे ना हो। किसी ने हमारी प्रशंसा की, आपने तो बहुत आप बहुत मीठा बोलते हैं, आप बहुत शांत रहते हैं, तो हमें ये सदैव ध्यान रहता है कि मेरे से ऊंची आवाज में वो बात ना हो, मेरे मुख से कड़वे बोल ना निकले, अटेंशन रहता है ना। और एक रिलेशन भी बन जाता है कि हाँ इसने मेरा गुण देखा तो ये बहुत अच्छा। मैंने देखा कि अगले 6 मास तक उसका इतना सुंदर प्रभाव था और हमें भी कई बार ये पता पड़ता है, हमें भी अब जैसे मेरे बारे में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिख के डाली थी जिसका मुझे पता नहीं है। मैंने क्यों कहा कि दूसरे को देखना, अपने को हम इतना ठीक से चेक नहीं कर पाते हैं परंतु दूसरे को देखने की आदत है ना, हम लोग लंबे समय से दूसरों को जन्म जन्मांतर तक से देखते आए हैं तो दूसरों को हम ठीक से देख सकते हैं लेकिन उसकी बुराई नहीं देखनी है, उसमें पॉजिटिव चेंज क्या आ रहा है और उसे लिख करके यदि हम दे सकते हैं उसकी अच्छी बातें तो दे, तो इससे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है और आत्म परिवर्तन में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है हाँ तो एक बहुत अच्छा ये भी मतलब एक अपने परिवार में
हमने स्पार्क मीटिंग में 22-23 लोग नियमित मिलते थे तो एक बार सबको सर्कल में बिठा दिया और हर एक को एक कागज लंबा कागज दे के उसमें कहा अपना नाम लिखिए। सबने लिख लिया फिर वो कागज हर एक के पास वो गया, मेरा कागज इनके पास, इनका कागज उनके पास और हर एक से ये कहा गया कि ऊपर जो लिखा है उसके अलावा लिखना है। इन्होंने लिखा मान लीजिए मेरे लिए कि ये आज्ञाकारी है अथवा हाँ जी का पार्ट तो दूसरा वाला एक्सप्लोर करे और क्योंकि हम एक ही सेंटर के एक दूसरे को जानने पहचानने वाले थे इसलिए ये कर सके। तो ऐसा करते हैं वो कार्ड आज भी मेरे पास 23 लोग थे 22 लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है वो इतना उमंग भरता है अंदर से कि भाई इन्होंने मुझ में ये पोटेंशियल देखा तो वो दुआ का काम करता है। ऐसा भी कर सकते हैं हम ग्रुप में बैठकर, एक्सपेरिमेंट ही है सीधा सीधा और हमारे लिए वो बूस्टर डोज बन जाता है।
एक बहुत अच्छा साधन है ये। कई बार कोई चीज हमारे में नहीं भी होती है या कम मात्रा में होती है कोई चीज लिख करके हमें देता है ना, तो उस पर हमारी जो है ना उस पर हमारा टेंशन बढ़ जाता है और उसको हम धारण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये भी आप जरूर करें, जिस सेंटर से कम लोग आए हैं कोशिश करके वहां पर अपना एक अच्छा ग्रुप तैयार करें और ग्रुप में ये प्रयोग भी करें, पुरुषार्थ भी करें, तो ये भी एक दुआ लेने देने का एक अच्छा साधन बन जाता है। अगला प्रश्न है कि ये तो था दूसरों को ऑब्जर्व करना, अब हम अपने को भी ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमने भाई साहब ने कहा चार्ट रखे, एक डेली बेसिस पे चार्ट रखना है, एक मंथली बेसिस पे चार्ट रखना है, और महीने के अंत में हम सभी ना एक लेटर लिखें, अपनी स्व उन्नति का एक लेटर लिखें कि हम अपने पुरुषार्थ से कहां तक संतुष्ट हैं, हमारे में कहां तक परिवर्तन आया, हम अपनी स्व उन्नति को चेक करके, और एक बाबा के नाम पत्र लिखें कि बाबा हम इस समय गए थे स्पार्क मीटिंग में, हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया, हमने दुआएं दो दुआएं लो में भाग लिया है, एक वर्ष का प्रोजेक्ट है, आज एक महीना पूरा होता है और अब पिछले एक महीना में मेरे में ये परिवर्तन नजर आ रहा है, मैं अपने पुरुषार्थ से इतना संतुष्ट हूं, ऐसा करके एक बाबा को पत्र लिखे और हो सके तो वो पत्र स्पार्क ऑफिस में भेजे या जहां भी आपको ईमेल आईडी दिया जाए वहां भेजे, ताकि उसमें जो अच्छे अनुभव युक्त बातें होंगी हम दूसरों को भी शेयर कर पाएंगे, जिससे दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो हर महीने के अंत में अपनी स्व उन्नति का एक पत्र बाबा को अवश्य लिखना है या अपनी चेकिंग करनी है। उसके बाद दुआओं से संबंधित, बाबा की जो मुरली है उसका तो बहुत पहले ही मेहनत करके इंदिरा बहन जी ने हम लोग के लिए मक्खन निकाल के रखा हुआ है, तो इस पे तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बुक आपको मिल जाएगी बाबा के जो भी वर्जन से उसका एक बहुत सुंदर कलेक्शन मेहनत करके बहन जी ने बनाया है, वो हम पढ़ते रहेंगे बीच में। ऐसा
वो कलेक्शन जो है ना 2008 में वो छपा था, तब तक का है, तो बाकी की मुरलियां रेफर करना आप 8 के बाद की।
वैसे तो ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है, 1936 वाला ज्ञान
नहीं कह रहे हैं और भी आपको अच्छा मिलेगा वो हाँ, कह रही हूँ मैं,
नया भी आप लोग जरूर निकालेंगे अध्ययन करके। और उसमें से मैं ये कह रहा था कि अगर हो सके ना तो एक एक बात कोई भी बहुत अच्छी जो हमें लगे ना, मुरली चार पेज की होती है लेकिन पूरा चार पेज हमारे लिए नहीं होता है, बाबा तो पूरे संसार के लिए चला रहा है ना, तो पुरुषार्थ की एक अच्छी विधि क्या समझ में आती है कि उस मुरली से केवल एक बात जो अच्छी लगे हमें सारे दिन के लिए ले लेना चाहिए और सारे दिन में उस पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही इस बुक से बाबा का कोई भी एक वर्जन आप प्रतिदिन ले लें और ले करके सारे दिन उस पर बहुत ध्यान रखें, उस पर चिंतन करें, उसको लिखें, उसको आचरण में लाने का प्रयास करें। तो इससे संबंधित, दुआओं से संबंधित बाबा की जो भी मुरलियां हैं, पॉइंट्स हैं, वो निकालें। अगर कोई ऐसी स्टोरी आपकी जानकारी में हो उसे भी आप लिख करके भेजें, या कोई रियल घटना हो आपके आसपास में दुआओं से संबंधित। पता नहीं मैंने अभी बताया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ज्ञान सरोवर में अभी अभी एक मास पहले हमारे एक भाई पर भालू का अटैक हुआ था, बताया था मैंने, हाँ, तो वो भाई पर भालू का सुबह सुबह वो वॉकिंग कर रहे थे, पीछे से तीन बड़े बड़े भालुओं ने, एकदम हट्टे कट्टे भालुओं ने अटैक किया, और जिस तरह से अटैक किया, जिस तरह से जख्म उनके शरीर पर थे, बचना तो असंभव ही था, लेकिन दुआओं का बल, क्या कहा, पत्थर को भी असंभव को भी संभव कर देता है। आज की डेट में वो भाई बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके किसी नस पर चोट लग गई थी तो ये हाथ काम नहीं कर रहा था उनका, अब उनका हाथ भी काम करना शुरू कर दिया है। केवल 10 दिन के बाद एक और ऐसा ही अटैक हुआ, वो किसी बाहर वाले पर हुआ, वही आसपास के एरिया में ही हुआ, उन्हीं भालुओं ने उस पर भी अटैक किया, वो बेचारा 2-3 दिन में शरीर छोड़ दिया। तो कहने का भाव ये है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो दुआओं का असर हमें दिखाती हैं, चाहे वो भगवान की दुआएं हो, लोगों की दुआएं हो, पुण्य कर्मों का बल हो, सेवा की दुआ हो। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, स्टोरीज हैं, हमें बहुत बल प्रदान करती हैं। तो आपके संज्ञान में भी यदि ऐसी कोई सत्य घटना हो तो आप सब जरूर उसको लिख करके भेजेंगे, ताकि हम एक दूसरे को शेयर कर सके और इससे सबको लाभ मिल सके। हाँ बहुत सारा बना हुआ है लेकिन अभी हमको केवल एक में ही कंसंट्रेट करके काम करना है। कहा जाता है ना एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाया। पुरुषार्थ को हमें बहुत टिपिकल नहीं बनाना चाहिए और बहुत सारी चीजें एक साथ हमें लेकर के नहीं चलना चाहिए। एक चीज की सिद्धि हो गई तो अनेक सिद्धियां अपने आप होने लगती है ना। मेडिकल साइंस भी क्या मानता है ना? हाँ क्योंकि सारे वैल्यूज और सारे पुरुषार्थ एक दूसरे से कनेक्टेड है तो किसी एक को अपनी रुचि का विषय बना लेना चाहिए, उस पर अपनी मास्टरी कर लेनी चाहिए, चाहे वो विजन हो या कुछ भी हो तो बाकी सब उससे कनेक्टेड है। हाँ तो वो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, चावल खाना है तो चावल ही खाओ, फिर उसके साथ रोटी मत खाओ, रोटी खाना है तो केवल रोटी ही खाओ। बहुत सारे वेराइटी फूड एक साथ मिक्स करेंगे तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, फिर हेल्थ को तकलीफ होती है। तो इस तरह से पुरुषार्थ को भी सिंपल वे में करें, इजी वे में करें, बहुत सारी बातों को एक साथ लेकर के न चले, ऐसा हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो अपना एक दूसरों का एक ऑब्जर्वेशन चार्ट भी रखें, अपना एक सेटिस्फेक्शन लेटर हर महीने बाबा को लिखें और स्टोरीज आदि का कलेक्शन करें और इससे संबंधित कुछ कमेंट्रीज और विजुअलाइजेशंस, अगर वैसे तो स्पार्क की तरफ से कोशिश करेंगे कुछ नए नए विजुअलाइजेशंस आपको दिए जाएं, कमेंट्रीज ऑडियो कमेंट्रीज दी जाए। पर आप में से भी बाबा के तो हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है ना, गुण है, गुणों की खान है बाबा के बच्चे, आप सब में भी बहुत विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का प्रयोग करके यदि आप भी बना सकते हो तो जरूर बनाएं कमेंट्रीज और इस तरह की जो भी है विजुअलाइजेशंस बना करके भेजें। हाँ ये देखिए ये ना इसे क्लास आप लोग नहीं समझिए और ऐसा नहीं समझिए कि जो सामने बैठे हैं वो कराने वाले लोग हैं, सब करने वाले हैं, सब कराने वाले हैं, ये हम सब का बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि हमको सिर्फ करना है, आपको कराना भी है, तो आपको अपने अनुभवों का लाभ, अपने ज्ञान का लाभ सबको देना है। तो इस तरह से कुछ नवीनता भरी चीजें आप सब भेजें और एक नेक्स्ट प्रश्न इसमें और आप लिख लें क्योंकि समय हो रहा है। अभी तक तो था कि दुआएं लेने के लिए सब बातें हो रही थी ऊपर, अब दुआएं अगर हमें दुआ किसी को देनी है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें या उसके लिए हम क्या समझ डेवलप करें। हालांकि चर्चा इसकी भी हो गई है पर एक पॉइंट के रूप में हम आपको लिखवा रहे हैं तो आप इसको बाइफरकेट करके इससे लिखेंगे कि यदि हमें दुआ दूसरों को देनी है तो उसके लिए हम अपनी मानसिकता में क्या परिवर्तन लाएं या क्या पुरुषार्थ करें। और लास्ट में एक लास्ट प्रोग्राम ये लास्ट का क्वेश्चन ये है कि हम अपने उमंग को बनाए रखने के लिए, जनरली यही देखने में आता है ना कि एक डेढ़ मास के बाद हमारा उमंग ढीला पड़ जाता है। बाबा के घर में जब तक आते हैं यहाँ की तो धरने ही चमत्कारिक है, यहाँ आते ही क्या कहें कमजोर में भी जान आ जाती है ना, एक मृत व्यक्ति में भी प्राण आ जाते हैं और जाने के बाद उस प्राण का असर थोड़े समय तक रहता भी है, एक मास दो मास है? लेकिन ये एकदम सत्य बात है ना, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ज्ञान योग का माहौल है, शुद्धि और पवित्रता का वातावरण है, भोजन का असर है, संगत का असर है, सब कुछ का असर है ना यहाँ पर, और सारा दिन हम अपनी लौकिक प्रवृत्ति को छोड़कर ज्ञान योग में लगे रहते हैं तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ अवस्था बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि मैं मधुबन वालों को कम मार्क्स देता हूं और जो लोग प्रवृत्ति में रह करके पुरुषार्थ करते हैं, यदि हमने यहां जो पुरुषार्थ किया उतना ही पुरुषार्थ यदि आपने अपनी लौकिक प्रवृत्ति में रहते किया तो बाबा कहते हैं कि आपके मार्क्स हमसे डबल हैं, आप ज्यादा हमसे आदरणीय हैं, आप हमसे ज्यादा सम्माननीय हैं, आप ज्यादा योग्य हैं, क्योंकि आप अनफेवरेबल कंडीशंस में रहते हुए इतना कुछ कर पा रहे हैं। पर कंडीशंस का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता ही है ना, ये भी एक सत्य है। तो उमंग हमारा कई बार ढीला पड़ने लगता है तो हमारा उमंग बना रहे उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमने बताया कि कमेंट्रीज का हम लोग उपयोग करेंगे, विजुअलाइजेशंस का हम उपयोग करेंगे, बाबा को पत्र लिखेंगे हर महीने अपना, और ये साधन हम लोग अपनाएंगे। और एक ख्याल ये भी आया था कि आप लोग जैसे चार्ट बताया ना कि हर 15 दिन या एक महीने का चार्ट भरेंगे, अगर संभव हो सके तो सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार आप लोग आपस में बैठें अपने सेंटर पे और बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करें, अपनी स्व उन्नति का आदान प्रदान करें, तो ये अनुभव भी बहुत काम की चीज है। ज्ञान की शेयरिंग तो अब शुरू हुई है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे इस ज्ञान में आए थे तब दादियां क्लास कराया करती थी, तब ये भाई बहने बहुत कम क्लास, सिलू बहन, उषा बहन, ये बहुत कम इनके क्लासेस। मधुबन में जब हम आते थे तो दादियों के ही मैक्सिमम क्लास होते थे, जो दादाएं होते थे उनके क्लास होते थे, और वो क्लास में क्या सुनाते थे, ज्ञान की बातें नहीं सुनाते थे, अनुभव की बातें सुनाते, बाबा की बातें, मम्मा की बातें, उन्होंने कैसे कैसे पुरुषार्थ किया, कैसे कैसे कराया। तो अनुभव बहुत ही शक्ति की चीज होती है, इससे हमारा आत्म परिवर्तन सरल हो जाता है। तो हो सके तो वीकली या दो वीक में एक बार बैठ करके हम लोग आपस में चर्चा करें। और एक बात भाई साहब से अभी जैसे निकली थी कि अगर पॉसिबल हो सके इस पर आप विचार करें तो हर तीन महीने या चार महीने में ये ग्रुप कहीं न कहीं एक बार मिले, दो दिन का एक प्रोग्राम रखा जाए, आपस में दो दिन की कुछ भट्टी हो, ज्ञान की चर्चा हो, इस विषय पर लेन देन हो, ताकि फिर से हमारा उमंग जो है नया हो जाए। तो साल में यदि दो तीन बार भी हम लोग मिलते हैं कहीं पर एक जगह इकट्ठा हो करके, जैसे आज यहां इकट्ठे हुए हैं, तो ये ग्रुप कहीं और जहां जगह की सुविधा हो मिल सके, तो इससे भी हमारे अंदर एक नवीन चेतना आएगी और बनी रहेगी। तो इस पर भी आप लोग अपना राय देंगे। तो इस तरह से ये कुछ हमारा जो था ये डूइंग पार्ट था, इस पर आप गहनता से विचार करेंगे, और विचार करके यदि आज रात तक दे दें तो हम लोग उस पर वर्कआउट करके आपको जाने से पहले कुछ राइटिंग्स आपको दे देंगे, नहीं तो कल सुबह भी दे सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस पर अच्छे से अच्छा चिंतन करके लिख करके दें। ओम शांति जी 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 पर सुदर्शन चक्र क्या है, एक बहुत बड़ा विषय है, उस विषय के अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे विषय आ जाते हैं। केवल सुदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो सुदर्शन चक्र में भी एक बहुत मैंने गुह्यता समाई हुई, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ हाँ वो भी इसीलिए तो वो भी एक टूल है, आप उसको भी निकाले, उसको भी लिखे। ओम शांति।
वो बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि दुआएं दे उनका मतलब ये था कि हम सत्युग में जब रहते हैं, उस श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रेडिएट होते हैं, जैसे इंदिरा दीदी ने क्लैरिफाई किया सतो प्रदान स्थिति, और बाद में द्वापर में बाबा हमेशा कहते हैं भक्तों को इमर्ज करके दे रहे, वो देने का संस्कार दातापन का इमर्ज होता रहता है। तो ऐसे भी वो भी एक अच्छा टूल है। और जब भाई जी बोल रहे थे कि मुझे कुछ पॉइंट्स याद आए, हमें समझ तो है, जैसे अभी ज्ञान है कि उन्हें दुआएं देना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, बट उसके लिए अभ्यास करना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभ्यास के लिए सुंदर लौकिक में भी रिसर्च हुआ है, बाबा भी कहते हैं कि हमारे चित्त जो सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया तो बहुत अच्छा काम करता है। तो आप खुद के लिए एक पेज ऐसा लिखे पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल मैं आत्मा यानी शुद्ध श्रेष्ठ हर गुणों से मैं भरपूर और मैं रेडिएट कर रही हूं ये गुणों को, शक्तियों को, कुछ भी हो खुद के लिए जो आपको जैसे चार्ज हो जाए, बहुत अच्छा फीलिंग्स में लाए, वो एक आप एक पेज जो है वो लिखे और रोज उसको सोने से पहले, ये प्रूव हुआ है सोने से पहले जो आप विचार सोचते हैं आधा घंटा तक वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, और 8 घंटे या 6 घंटे जितने आप सोते हैं वही थॉट्स आते रहते हैं, तो वही बार 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 आते हैं, तो ये बहुत अच्छा टूल बन जाता है, वो आप कर सकते हैं। और सुबह अमृत वेले उठते ही बाबा से एक वरदान के रूप में गुड मॉर्निंग करने के बाद आप जिस स्थिति आप वो फीलिंग्स को बार बार ये करें, ऐसे नहीं पॉइंट के रूप में, वो फीलिंग्स जो इमर्ज हो उसको बाबा से वरदान की तरह वो ले ले बाबा से कि मैं पूरा दिन मुझसे इतनी श्रेष्ठ स्थिति या जो भी है सुख हो वो रेडिएट होता रहे, सुखदेव का हो, जो भी वरदान बाबा से ले ले, और दिन में भी बीच बीच में वो आप इमर्ज करते रहेंगे तो आपको हेल्प होता रहेगा। पॉइंट्स भी बाबा भी हमेशा कहते हैं सेल्फ टॉक, वो एक बात थी कि दीदी भी एक क्लास कराते थे, ब्रह्मा बाबा संपन्न बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल था अपने आप से बातें करना। तो अपने आप से जो है हमें बात करना चाहिए कि क्यों बार बार इतना जानकारी होने के बाद भी उस आप चेक करने के बाद कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। जब तक हम अपने आप से बात करके नहीं निकालेंगे वो भी एक टूल बन सकता है।
अनुभव होंगे ऐसे अनुभव भी लिख करके देने चाहिए, लोग जरूर लिखें।
ओम शांति। अब आपसे आखिरी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, बहन जी ने 21 परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं सीधे बाबा ने कहा, आपकी इच्छा किन किन परिस्थितियों पर हम योग अने ये प्रयोग करें वो परिस्थितियां लिख के दीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि हर एक की अपनी अलग परिस्थिति होती है, ठीक है ना। मैं जैसे शिक्षक हूं तो एक टीचर की परिस्थिति अलग है, कोई डॉक्टर है उसकी परिस्थिति अलग है, बहन जी किसी कंपनी में जाती थी उनकी परिस्थिति अलग है। तो हरेक को किस परिस्थिति में दुआओं का प्रयोग करवाना है वो परिस्थितियां लिख के दे, जिसको लगता है कि हाँ इसके ऊपर भी अने प्रयोग होना चाहिए तो वो लिख के दे देंगे। तो यहां से फिर जो कमेंट्री बनाने वाले हैं, विजुअलाइजेशन बनाने वाले हैं, उनके साथ मिलकर उसके ऊपर एक छोटा सा बनाकर हम दे सकते हैं, ठीक है। अपनी परिस्थिति अपने लिए आप चाहती हैं कि इसके ऊपर दुआएं देने का प्रयोग करना चाहिए, जैसे इसमें लिखा था कि लंबे प्रवास में आते वक्त मैं अपने आप को कैसे संभालती हूँ, अथवा बाबा ने जो
लिख के दे दीजिए और उसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है,
जैसे शुरू
बहन की समस्या है, इन भाई की है, ऐसा नहीं, ये समस्या है और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो आपके लोकल अपनी पर्सनल जो फेस कर रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा और जिनको इसकी तरफ ध्यान नहीं गया उनका ध्यान भी जाएगा।
जैसे शीलू बहन ने जब फर्स्ट कॉमेंट्री की थी उसके पहले कोई कॉमेंट्रीज होती नहीं थी, लेकिन आज दिन तक उस कमेंट्री का, फर्स्ट कमेंट्री का इतना इफेक्ट होता है कि लोग, क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ, उनको सालों हो गए ज्ञान में चलते, बहन जी आपकी कमेंट्री सुनकर हमको समझ में आया योग कैसे करना होता है, बाकी ऐसे क्लियर नहीं था। तो ऐसे जनरली ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे करो, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी रेडीमेड कमेंट्री रोज में सुन रहा हूँ, रोज में सुन रहा हूँ, तो फिर बात क्लियर होती है। तो वो पर्पज है कि ये परिस्थिति लिखो ताकि हम उस आधार से क्रिएट करें और रेडीमेड भी दे सके। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो उस कमेंट्री से समझ में आ जाए।
ईमेल ईमेल आईडी ले लीजिए। हाँ ठीक,
ओम शांति। हाँ ईमेल आईडी है bksanjay319, सब छोटा SANJAY 319@gmail.com।